Rama Hare Hare
Rama Rama Hare
Hare Krishna Shri Dham Kondipur mein Vithal Rukmani ke charno mein baith kar Giriraj ke sharan mein 9 varsh ke स्वागत में उषा देवी गुप्ता लक्ष्मीकांत ब्रजमोहन गुप्ता परिवार अनुराग सुपुत्र के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत के सत्संग का शुभ संकल्प किया है, जिसके चौथे दिन में आप सब श्रद्धापूर्वक बधा रहे हैं। आपका स्वागत करते हैं, इस परिवार का प्रशंसा करते हैं कि कली काल में कृष्ण भक्ति के सर्व श्रेष्ठ और सरल साधन श्रीमद् भागवत के श्रवण वर्णन का शुभ अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। कल हमने चतुर्थ स्कंद श्रीमद् भागवत में दक्ष यज्ञ धर्म के रूप में और महान वैष्णव भगवान शंकर का अपमान और यज्ञ का विध्वंस और भगवान विष्णु का आना, शंकर से दक्ष का क्षमा याचना मांगना और यज्ञ पूर्ण हुआ। आज हम 5 अध्यायों में ध्रुव महाराज, जो चरित्र तो आपने सब सुना है, स्वयंभू मनु ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुए, कोई माता पिता नहीं उनका, उनके छोटे पुत्र उत्तानपाद की 2 रानियां सुनीति और सुरुचि, सुनीति का पुत्र ध्रुवा और सुरुचि का पुत्र उत्तम। राजा का प्रेम सुरुचि के साथ ज्यादा। एक दिन छोटा बालक 5 वर्ष का ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़ा, मां सुरुचि ने हाथ से पकड़ के रोक दिया, कहा, इस गोद में बैठने के लिए अथवा इस सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए तुम्हारे को भगवान की प्रार्थना करके मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा, मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बैठ सकते। ध्रुव का अपमान हुआ। कभी अपमान भी भगवान मिलाता है। संसार में अपमान भी हो और संसार से दिल उठ जाए और भगवान की तरफ चले जाए तो बहुत अच्छी बात है। ध्रुव क्षत्रिय का पुत्र था, दुखी होकर अपनी मां के पास गया और मां को जब समाचार ये मिला, मां ने कहा, सच कहा है उसने, तेरी मासी ने सच कहा है, भगवान के पास जाओ। लेकिन एक बात बेटा ध्यान रखना, तुम भगवान की भक्ति करने जा रहे हो और अपनी मासी सुरुचि के लिए दिल में द्वेष लेकर जाओगे, उसके लिए बुरा विचार लेकर जाओगे तो भगवान नहीं मिलेगा। ये सुनीति का ऐसा गुरु का उपदेश है माता का, जो ध्रुव महाराज ने हृदय से अपनी मासी के लिए बुरा विचार निकाल दिया और ध्रुव वनवास की तरफ जाने लगे और भगवान श्री कृष्ण ने नारद को गुरु के रूप में भेज दिया। नारद ने कहा कि बेटा तुम छोटे हो, जंगल में जा रहे हो, जंगल में तो हिंसक पशु होते हैं, कहां रहोगे, कहां खाओगे, तुम्हारे पिता को मैं समझा दूंगा, चलो। बोला नहीं, भगवान को मिलाना है तो रास्ता बताइए मुझे और वापस संसार में भेजना है। आप नारद जैसे गुरु हमको संसार में क्यों भेज रहे हो? नारद ने देखा कि ये शिष्य पक्का है। नारद ने कहा, ये 12 अक्षर का मंत्र आपको देता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करो, भगवान का अर्चन करो और साधन करो, तुम्हारे को तत्काल भगवान मिलेंगे। ध्रुव महाराज मधुबन में गए, जमुना जी के किनारे पे, पहले महीने में फल फूल खाया, दूसरे महीने में जल पिया, तीसरे महीने में हवा खाया, चौथे महीने में तो कुछ नहीं खाया, बस एक पांव पे खड़े हुए और भगवान का ध्यान किया। पांचवें महीने तक तो सारे ब्रह्मांड का वातावरण बंद हो गया। एक ध्रुव के सांस ले तो ब्रह्मांड में सांस चले, ध्रुव सांस बंद करे तो ब्रह्मांड का सांस बंद हो जाए। सब देवता परेशान हो गए, ब्रह्म विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्त को मैं दर्शन दे के प्रसन्न करने जा रहा हूँ, आप चिंता मत करो। छह महीना ध्रुव की तपस्या के साक्षात भगवान विष्णु सामने आके खड़े हो गए। ध्रुव आंखें बंद करके हृदय में भगवान को देख रहा था। भगवान विष्णु ने कहा, ध्यान मेरा कर रहा है, मैं सामने इसको दर्शन देने आया हूं। गरुड़ के ऊपर चढ़ के भगवान विष्णु आए हैं तो अंदर में देखने वाले रूप को भगवान ने छुपा दिया, और ध्रुव छटपटा के देखा तो सामने साक्षात भगवान को देखा। ध्रुव पढ़ा लिखा नहीं था, स्कूल गया नहीं था, कुछ प्रार्थना करना चाह रहा था लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोल को लगाया, गाल को लगाया। जैसे भगवान के शंख का स्पर्श हुआ, धारावाहिक ध्रुव प्रार्थना करने लगा, और ध्रुव बहुत सुंदर प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम क्या चाहते हो, जो चाहते हो मांग लो। ध्रुव ने कहा, मैं घर से निकला था मेरे पिता से भी बड़े राज को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आपके दर्शन के बाद अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप हीरा मिल गए हो और मैं कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, दुनिया को ढूंढ रहा था, और आप जगदीश मिल रहे हो और मैं जगत को ढूंढ रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ध्रुव तुमने तपस्या की है, तुमने मेरी भक्ति की है, तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण होगी, तुम इस धरती के ऊपर राज करोगे, लेकिन इसके बाद तुम्हारे लिए मैंने ध्रुवलोक बनाया है, इस ध्रुवलोक में तुम नित्य निवास करना, ये तुम्हारे लिए विशेष मैंने बनाया है। भगवान ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिया। छह महीने में ध्रुव महाराज वापस लौटा तो उनके पिता ने उसका स्वागत किया और ध्रुव महाराज को राज दे के महाराज उत्तानपाद तो चले गए तपस्या करने के लिए। ध्रुव के भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया, ध्रुव महाराज को क्रोध आ गया, यक्षों से युद्ध करने लगे, यक्षों को मारने लगे। अरे भगवान के दर्शन के बाद भी क्रोध आ गया। उस वक्त स्वयं भू मनु उनके दादा आए, कहा, बेटा ध्रुव, एक यक्ष ने तेरे भाई को मारा, तुम यक्षों के वंश का विनाश क्यों कर रहे हो? भगवान उससे प्रसन्न होते हैं जो बड़ों का आदर करे, बराबर वालों के साथ मित्रता करे, छोटों के ऊपर दया करे। आप युद्ध को समाप्त करो। आज स्वयंभू मनु जैसे महान भागवत की शिक्षा से ध्रुव महाराज का क्रोध चला गया। तो भगवान मिलने के बाद भी भक्त के संग की बहुत जरूरत है। भक्त के संग से भगवान मिलता है, और भगवान मिले फिर भी भक्त का संग मुख्य अंग रहता है, तो भक्त का संग फिर भी जरूरी है। आज ध्रुव महाराज राजपाट को छोड़ के तपस्या करने के लिए हरिद्वार से आगे गए। गंगा जी के बहुत आवाज को सुन के ध्रुव महाराज उठ के जल दिए। गंगा माता ने कहा, आप जैसे भक्त तपस्या करते हैं तब पापियों के पाप को मेरा पापी कई स्नान करने आते हैं, आप यहां रहते हैं और स्नान करते हैं तब पाप मेरा धुलता है, कहां जा रहे हो? आवाज ज्यादा आ रहा है आपका, मेरे ध्यान में विघ्न पड़ रहा है। ऋषिकेश में एक ध्रुव का छोटा मंदिर है लक्ष्मण झूले के बाद, वहां एक 100 मीटर में गंगा में कोई आवाज नहीं है, गंगा बिल्कुल सीधी चलती है, वहां कोई छल 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 कुछ नहीं है, कोई पत्थर नहीं। ध्रुव के लिए गंगा वहां शांत हो गई। फिर ध्रुव महाराज वहां से बद्रिक आश्रम चले गए। बद्रिक आश्रम में ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे, वैकुंठ से विमान आया, नंद सुनंद उसको चलाकर लाए और कहा कि ध्रुव महाराज, भगवान ने आपको वैकुंठ में बुलाया है, अब आपका संसार की यात्रा समाप्त। ध्रुव महाराज ने अलकनंदा में स्नान किया, ऋषिगण ऋषियों को प्रार्थना किया तो मृत्यु सामने आके खड़ा हो गया। बोले मृत्यु लोक है, बोला मृत्यु लोक है, भगवान का विमान आया है। मृत्यु के सर के ऊपर पांव रख के ध्रुव महाराज वैकुंठ के विमान में चढ़ा। विमान उड़ा, ध्रुव ने कहा, रुको, मेरे को भगवान से मिलाने का रास्ता मेरी मां ने बताया था, बिना मेरी मां के मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी सीखने की बात है। किसी ने आपको भक्ति का रास्ता बताया, आपको भगवान मिल जाए तो उसको कभी नहीं भूलना। जो, जो नंद और सुनंद कहते हैं अगले विमान में आपकी माता पहले ही जा रही है, आपको उसकी चिंता मत करो। श्री प्रभुपाद जी की निम्रता का सुंदर भाव भागवत में इन श्लोकों में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं तो अब 70 साल से ऊपर हो, 70 साल में तो मैंने संस्था शुरू की है, आज मैं 80 साल को निकट पहुंच रहा हूं। अब अंत समय मुझे भगवान याद आए ना आए, मेरा कोई शिष्य ध्रुव की तरह भगवान की भक्ति करे और भगवत धाम जाते हुए मेरे को याद करेगा तो मैं भी भगवान को प्राप्त कर सकूंगा। इतनी निम्रता से प्रभुपाद ने शब्द लिखे हैं कि मेरे भक्तों में कोई ध्रुव की तरह भगवान को प्राप्त करेगा। तो ऐसे ध्रुव महाराज का अद्भुत चरित्र है। उस चरित्र में एक बात है कि उसको कितना विश्वास था कि भगवान मिलेगा, और जब हमको ऐसा विश्वास होता है तो भगवान गुरु अपने आप भेज देता है, गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। नारद जी अपने आप आ गए और ध्रुव का काम बन गया और ध्रुव राजा भी बना। ध्रुव का बेटा उत्कल राज लेने को तैयार नहीं था, बड़ा तपस्वी था, उसने राज लिया ही नहीं। ध्रुव के वंश में आगे महाराज अंग के पुत्र वेण हुए। ये बड़े बदमाश थे, ये वेण बड़े दुख देते थे राज प्रजा को। तो ऋषियों ने कहा कोई राजा नहीं है, ध्रुव का वंश है, राज खाली पड़ा है सिंहासन, तो वेण को बिठा देते हैं। वेण को बिठा दिया, वेण ने यज्ञ बंद करा दिया, गौ पूजा बंद करा दी, भगवान की अर्चना बंद करा दी, ब्राह्मणों का सेवा बंद करा दिया। ऋषियों ने कहा ये वेण क्या कर रहे हैं। राजा में भगवान का अंश होता है कि नहीं होता है, भगवान का प्रतिनिधि राजा है कि नहीं, बोला है तो फिर मैं जो कहता हूं वो करो ना। ऋषियों ने कहा भगवान कहां और कहां तुम, भगवान के द्वेषी, तुमको राज हमने दिया है तो तुमसे राज ले भी सकते हैं। और ऐसे करे कर ऋषियों ने होंकार की, ओम का उच्चारण किया और वेण का प्राण निकल गया। वेण का प्राण निकल गया। ये महात्माओं में ये सामर्थ्य था, किसी को राज दे सकते थे तो राज ले भी सकते थे। ध्रुव की मां सुनीति ने उसके शरीर को संभाल के रखा। अराजकता को देखकर ऋषियों ने कहा ध्रुव के वंश का विलोप नहीं होना चाहिए, वंश खत्म नहीं होना चाहिए। उस वेण के टांगों के मंथन करने से एक काला कलूटा पुरुष निकला। उसने कहा मैं क्या करूं, बोला निषाद जंगल में जाके रहो। ये निषाद जाति की उत्पत्ति, जो पाप का भाग था वेण के शरीर का, उससे उत्पन्न हुआ। वेण के सीधे हाथ का मंथन किया, भगवान का अवतार पृथु महाराज प्रकट हुए। वेण के उल्टे हाथ के मंथन करने से अर्ची लक्ष्मी रूपा प्रकट हुई। ये दोनों बिना माता पिता के, बिना योनि के पृथ्वी और अर्ची का ऐसे प्रकट्य होता है। और यहां से फिर 11 अध्याय, पृथ्वी महाराज सबसे अच्छा राजा कैसा होना चाहिए, सबकी जरूरत को पूरा करे। इस पृथ्वी महाराज के प्रकट होते ही सारे देवता आ गए, सब देवताओं ने पृथ्वी महाराज को उपहार दिया जैसे राजा को उपहार दिए जाते हैं। किसी ने रथ दिया, किसी ने हाथी दिया, किसी ने घोड़ा दिया, किसी ने तलवार दिया, किसी ने तीर कमान दिया। ऐसे पृथ्वी महाराज राज सिंहासन के ऊपर बैठे तो प्रजा ने पृथ्वी महाराज को कहा देखो हम खेती करते हैं, हल चलाते हैं, जमीन से अन्न पैदा नहीं होता है, हमारा पेट पीठ से लग गया, हम भूखे मर रहे हैं। पृथ्वी महाराज रथ के ऊपर चढ़ के धनुष बाण का अनुसंधान पृथ्वी के ऊपर किया, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, आगे पृथ्वी भाग रही है, पीछे पृथ्वी महाराज। पृथ्वी ने रुक के कहा महाराज आप भूपाल हो, आप धरती के रक्षक हो, आप मैं मुझ पृथ्वी को मार क्यों रहे हो। महाराज कहते हैं तुम पृथ्वी हो, माता हो, सबका पालन पोषण करने के लिए इनके लिए क्यों नहीं अनाज की उत्पादन करती हो, इनकी भोजन क्यों नहीं देती। पृथ्वी महारानी कह रही है कि आतिताई राजा वेण जैसे जब होते हैं तो मैं अपने पेट में सब बीजों को छुपा देती हूं। इससे एक संदेश मिलता है भागवत से कि अगर हमारा राजा दुष्ट स्वभाव का है, पापी है और पाप कचारी है तो चीजों के दाम बढ़ेंगे धरती से। अरे धरती तो उतनी है जितनी आज से 1000 साल पहले थी, लेकिन आज वो ना गेहूं का धान और चावल का धान दाम क्यों बढ़ा हुआ है? ये सब चीजों का दाम बढ़ने का मतलब है भगवान और ये भगवान की भारिया पृथ्वी, पृथ्वी भगवान की पत्नी है, ये विष्णु पत्नी है, इसको भूदेवी कहते हैं। ये भूदेवी भगवान वाराहदेव की पत्नी है, ये विष्णु पत्नी है। और फिर पृथ्वी देवी कहती है, महाराज आप किसी को योग्य बछड़ा बना दो, मैं गाय के रूप में पृथ्वी सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर दूंगी। पृथु महाराज ने इंद्र को बछड़ा बनाकर देवताओं के लिए भोजन का व्यवस्था की, स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर मानव के लिए सारे अन्न फल फूल की व्यवस्था की, शेर को बछड़ा बनाकर पशुओं के लिए अन्न की व्यवस्था की। पृथु महाराज ने कहा, मेरी प्रजा केवल आदमी नहीं है, पशु पक्षी जो हैं वो भी मेरी प्रजा है, उनकी भी रक्षा करना, उनके भोजन की भी व्यवस्था करना, ये मेरा धर्म है। आपके घर में कुत्ता रहता है तो उसको भी रोटी देनी है ना, कि आपके घर में रहता है। यहां तक कि चूहा भी है तो उसके लिए भी दाना डालना चाहिए, चींटी है तो उसको भी दाना डालना चाहिए। अगर आपके घर में रह रहा है तो आप नहीं खिलाएंगे तो कहां से खाएगा, और नहीं देंगे तो आपका सामान खाएगा, तो उसको कुछ खिलाना ही चाहिए। पृथु महाराज ने पहले, पृथु महाराज पहले ऐसे राजा हैं जिन्होंने धरती को सीधा किया, समतल धरती को किया, ब्राह्मण शिक्षा से, क्षत्रिय रक्षा से, वैश्य गौरक्षा वाणिज्य और कृषि, खेती करे, गाय पाले और व्यापार करे, व्यापार भी कौन सा, गाय के पदार्थ का व्यापार करे, और चतुर्थ वर्ण सेवा से अपना जीवन निर्वाह करे। ये पृथु महाराज ने, पहले लोग भटकते रहते थे कभी कहां बंजारे की तरह, पृथु महाराज ने शहर बनाए, नगर बनाए, अच्छी तरह से राज का शासन चलाया। पृथु महाराज यज्ञ करने के लिए बैठे, अश्वमेध यज्ञ 99 पूरे हो गए, इंद्र को डर लगा के 100 यज्ञ हो जाएंगे तो मेरी इंद्र का पद चला जाएगा। इंद्र आया और घोड़ा चुरा के ले जा रहा था पृथु महाराज का, अत्रि ऋषि यज्ञ करा रहे थे, पृथु के पुत्र ने इंद्र से घोड़ा छीन लिया। दोबारा इंद्र सन्यासी के वेश में आया, लाल कपड़े पहन के आ गया। पृथु महाराज उठ रहे थे, बोला यज्ञ में बैठा हुआ हिंसा नहीं कर सकता, आप उठ नहीं सकते हैं मारने के लिए। और उस वक्त ब्रह्मा जी ने आकर कहा, पृथु महाराज क्या जरूरत है आपको 100 यज्ञ करने की? भगवान विष्णु प्रकट हो गए, कहा कि 100 यज्ञ क्या करोगे, इंद्र पद को क्या करोगे, आप तो साक्षात भगवान के अवतार हो, अंश अवतार हो, शक्ति अवेश अवतार हो। आज इंद्र साधु के कपड़े पहन के घोड़ा चुरा रहा है, कल कई लोग साधु के कपड़े में चोरी करेंगे तो लोग साधु के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। पहले एक रावण साधु के रूप में सीता को हरण करने आया, आज इंद्र आप ये कार्य कर रहे हो, आप यज्ञ ही बंद करो। और फिर तुम्हारा ने यज्ञ बंद कर दिया, जैसे यज्ञ बंद किया भगवान विष्णु आए और इंद्र आया, इंद्र हाथ जोड़ के खड़ा है, पृथु महाराज ने उसको क्षमा कर दी, गले लगा लिया। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए कि चोरी करने वाले को, यज्ञ को बिगाड़ने वाले को भी आपने क्षमा कर दी, क्षमा बहुत बड़ा धर्म है। और फिर भगवान ने कहा, पृथु महाराज आपके राज में 4 कुमार आएंगे, आपको दिव्य उपदेश देंगे, तब आप हमारे पास वापस धाम में आना। देखो भगवान का दर्शन हुआ पृथु महाराज को, भगवान के अवतार, लेकिन फिर भी 4 कुमारों के संग की जरूरत पड़ी। और पृथु अर्जु के पास 4 कुमार आए, 4 कुमारों ने उनको आध्यात्मिक उपदेश दिया, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। पृथु और अर्जु संसार छोड़ के तपस्या करने चले गए और उनके वंश में आगे प्राचीन बरहित नाम का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध राजा, जिसने इतने यज्ञ किए कि ये पृथ्वी पूरी कुश घास उत्तर मुखो पश्चिम मुखी उत्तर घास से पृथ्वी ढक जाए, इतने यज्ञ किए, बड़ा कर्मठ राजा था। नारद जी ने कहा कि ये यज्ञ कर रहा है, पशु की बलि दे रहा है, भगवान की भक्ति तो कर नहीं रहा। नारद जी ने उनको कहा कि जिन पशुओं की तुम बलि दे रहे हो, ये देखो आकाश में पशु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब तुम यहां से जाओगे ये तुम्हारे से बदला लेंगे, प्रतिशोध लेंगे। बोला मेरे पुरोहित कहते हैं यज्ञ में बलि देनी चाहिए। बोला नहीं। फिर एक कथा बताई नारद ने प्राचीन परीत को, उस कथा का नाम है पुरंजन उपाख्यान। क्या नाम है? पुरंजन उपाख्यान। ये हम सबको समझने का कथा है। पुर कहते हैं शहर को, नगर को, जैसे नागपुर है, कानपुर है। रंजन कहते हैं जो उसमें सुख ले। ये हमारा शरीर है ना, इसको नव दरवाजे वाली पुरी बोलते हैं। भगवत गीता में नव द्वारे पुरे देही, ये सात द्वारे मुख पे, इधर ही मुख में है, दो आंखें दो नासिका एक मुख दो कान, ये सात हो गए ना, दो मलमूत्र त्यागने के द्वार, ये नौ द्वारे हैं, ये शहर है। इसमें रंजन कौन करता है? आत्मा आता है शरीर में और सुख भोगना चाहता है। तो कथा कैसे शुरू होती है? नारद जी कथा बता रहे हैं कि एक पुरंजन नाम का व्यक्ति अपने अज्ञात मित्र के साथ भ्रमण करता हुआ लोगों से भारतवर्ष में आया। उसने एक सुंदर कन्या को देखा। कन्या के पीछे पांच फन वाला सांप उसकी रक्षा कर रहे थे, 11 उसके सेनापति उसके साथ थे, बहुत बड़ी सेना कन्या के पीछे थी। प्राचीन वरीत कहता है महाराज क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोला इसका अर्थ है जीव आत्मा बाकी जोनियों में भ्रमण करके जब भारत में आता है तो जहां भी जाता है जीवात्मा भगवान उसके साथ होते हैं। हमारा अज्ञात मित्र कौन है? परमात्मा। वो हमेशा हमारे साथ होता है, उसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। दुनिया के सब लोग साथ छोड़ते हैं लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता। एक राजा था, उसकी चार पत्नियां थी। एक का नाम था काया, एक का नाम था कंचन, एक का नाम था कामनी, एक का नाम था करुणा। राजा पहली पत्नी काया से इतना प्रेम करता था, जहां जाए साथ ले जाए, जो मांगे सो खिलाए, जो चाहे वो दिलाए। कंचन से इतना प्रेम था कि उसको देखे तभी घर से बाहर निकले, उसको दिल में बसाए, जाओ वापस जाए तो उसी का मुंह देखे। और कामनी के साथ देश विदेश पर्यटन पे जाए लेकिन करुणा से कभी बात भी नहीं की। राजा बीमार हो गया, पलंग पे पड़ गया, चारों पत्नियां चारों ओर बैठी हैं। राजा को मौत के यमराज के दूत दिखाई दिए। राजा भयभीत होके कहा, अरे काया काया मुझे डर लग रहा है, ये मुझे ले जा रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो। काया बोलती है महाराज मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैंने सब जगह आपको साथ रखा, सब चीजें आपको दिलाई, सब तरह से खुश रखा, आप कैसे नहीं जाओगी? बोला नहीं जा सकती। अरे कंचन तुम तो चलो, तुमको दिल में बसाया। कंचन ने कहा महाराज अगर आप चले गए तो मेरा पति मैं दूसरा कर लूंगी, मेरा पति दूसरा हो जाएगा। राजा दुखी हो गया कि जिनको दिल में बसाया वो कोई साथ नहीं। अरे कामनी तुम तो चलो। बोला महाराज मर गए तो शमशान तक जाऊंगी, फिर मेरे को संसार के काम है। महाराज उठ के खड़ा हो गया कि देखो मैं लुटा गया, देखो जिनके साथ जीवन निभाया उनमें से कोई साथ नहीं दे रहा है। तब करुणा सामने आई, कहा महाराज मेरे से तो ये प्रश्न पूछो। बोला कौन से मुंह से पूछो, मैंने एक दिन आपसे बात तक नहीं की। बोला कोई बात नहीं मैं आपके साथ चलूंगा। महाराज कहता दो दुनिया वाले सुनो, जिससे पूछा नहीं वो साथ नहीं छोड़ रहा है, और जिनके लिए पूरा जीवन दिया उनमें से कोई साथ नहीं दे रहा है। ये सब हम राजा हैं। ये काया पहली पत्नी शरीर है जिसको खिलाते हैं पिलाते हैं वस्त्र पहनाते हैं, कभी साथ जाती है क्या? ये दूसरे चार आदमी उठा के शमशान तक ले जाते हैं। ये कंचन धन दौलत है, सारा दिन याद करते हैं मेरी है मेरी है मेरे पास पड़ी है। अरे हमारे मरते इसका स्वामी दूसरा बन जाएगा, इसका पति ही दूसरा बन जाएगा। ये कामनी संसार वाले रिश्तेदार नातेदार हैं, ज्यादा से ज्यादा शमशान तक जाएंगे, वहां भी घड़ी देखते रहेंगे कि कब इसका कपाल क्रिया हो तो हम जाएं। लेकिन परमात्मा करुणा है, हम उसको भूलते हैं लेकिन वो हमको नहीं भूलता, वो हमारा अज्ञात मित्र है। दुनिया को पकड़ना चाहो हाथ आएगी नहीं, और भगवान को छोड़ना चाहो तो भी आपको छोड़ेगा नहीं। तो वो अज्ञात मित्र परमात्मा है और पुरंजन जीवात्मा है, ये भारतवर्ष में आया। ये कन्या कौन है सुंदर? ये बुद्धि है। बुद्धि रूपी कन्या है, पांच फन वाला सांप उसकी रक्षा करता है, ये पांच प्राण है, प्राणापान समान व्यान उदान, ये हमारी रक्षा करते हैं। 11 सैनिक, एक मन और 10 इंद्रियां, ये आंख सुनने, आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सुनने के लिए, जीवा चखने के लिए, और ये त्वचा स्पर्श के लिए, हाथ पांव चलने के लिए, काम करने के लिए हाथ चलने के लिए पांव, मलमूत्र त्यागने की इंद्रियां और जीभा बोलने के लिए, 10 इंद्रियां हैं। ये उसके सेनापति हैं और बहुत सी इच्छाएं उसकी सेना है। महाराज पुरंजन ने पुरंजनी से कहा कि मैं तुमसे विवाह करता हूं, मेरे साथ रहोगी, और पुरंजनी ने हां कर दी और जीवात्मा बुद्धि के साथ तदात्म्य करके शरीर में प्रवेश किए। आंख के द्वारे से दर्शन करने के लिए बाहर चला जाए, सिनेमा देखने चला जाए, कान के द्वारे गाना सुनने चला जाए, इन सब दरवाजों से पुरंजन भोग करने चला जाए। एक दिन पुरंजन देर से आया, पुरंजनी नाराज हो गई, पुरंजन ने उसको बहुत मुश्किल से मनाया। अब कथा को मोड़ देते हुए नारद जी कहते हैं, एक काल यवन नाम का राजा, उसकी जरा नाम की कन्या, उसने पुरंजन को कहा मुझसे विवाह करो। पुरंजन ने कहा तुमसे विवाह नहीं करूंगा। वो क्रोधित हो गई, अपने पिता को कहा, पिता ने कहा तुम्हारे को 360 काले और 360 गोरे सैनिक देता हूं, और ये भय नाम का सेनापति और ज्वर नाम का शस्त्र देता हूं, तुम जाके पुरंजन के ऊपर आक्रमण करो। बोला ये क्या कथा है, काल यवन समय है, जरा बुढ़ापा है, और सबके ऊपर आता है, सबको कहता है कि मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो, और हम कहते हैं बुढ़ापा तुम चले जाओ। बुढ़ापा आता है तो पहले चार बाल सफेद कान के पास आते हैं, कान में बताते हैं कि आप भगवान का भजन कर लो, हम इतने होशियार हैं कि 2 रुपये का काला रंग दबा के कहते हैं तुम चले जाओ, बुढ़ापा तुम्हारा काम नहीं। ये जरा सबके पीछे लगती है और सबको पता है, सबको कहती है कि मैं तुमसे विवाह करूंगी, और सब कहते हैं नहीं करेंगे, और 360 काले सैनिक हैं रातें और गोरे सैनिक हैं दिन, ये हम सबको आके मारना शुरू करते हैं, हमारा दिन रात, ये जो दिन रात के दोनों सैनिक और भय, मृत्यु का भय उसका सेनापति है। अब पुरंजन के आस्ते आस्ते सेनापति कमजोर होने लगे, आंख ने देखना बंद कर दिया, कान में सोना सुनाई कम देने लगा, दांत गिरने लगे, पांच फण वाला सर्प थोड़ी देर के लिए प्रयास किया लेकिन फिर वो भी धीमा पड़ गया, और तब भय ने परज्वर नाम का, परज्वर का मतलब अंतिम मृत्यु के समय आने वाला बुखार, उसने दबोच दिया पुरंजन को, और मरते समय पुरंजन ने ध्यान किसका किया, पुरंजनी का, अपनी पत्नी का ध्यान किया, तो मरने के बाद पुरंजन हो गई स्त्री विदर्भी, और पुरंजनी हो गई मलयाध्वज राजा पुरुष, अंत समय जिसका ध्यान करेंगे वही शरीर मिलेगा, अंत काल में जिसका ध्यान करेंगे वही आपको, ये भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, अंत काले च मामेवं सुमरं मुक्त्वा कलेवरं यद्यद् भाव तद् भावितः, अंत काल में जो भाव करेंगे वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। तो पुरंजन विदर्भी स्त्री हो गई और पुरंजनी पुरुष हो गया, ये हमारी कथा है। असल में बुद्धि के साथ तदात्म्य करना, गर्भ में जाना, एक राजा था उसकी पत्नी थी, अपने महल में बैठी थी, उसके सामने एक जवाहरी का घर था, जवाहरी समझते हैं ना, सोना चांदी बनाने वाला, हीरे मोती, उस जवाहरी सुंदर था, राजा की रानी को उसके ऊपर मोहित हो गई। राजा जब गया अपनी ऑफिस में, अपने राज महल से निकल के और दरबार में गया, तो रानी ने दासी को कहा कि इसको बुलाओ कि तुमसे हम कुछ सोने के आभूषण लेंगे। वो घर में आया, आभूषण तो रानी को लेना नहीं था, वो उसको देख रही थी, अचानक राजा आया और बाहर से कहा महाराज पधार रहे हैं। रानी को डर लगा क्योंकि अंदर में तो चोर बैठा था, अब उसको कहता है तुम छुप जाओ, महाराज आपको देखेंगे तो पकड़ लेंगे। अरे कहां छुपूं, तो पुराने जमाने में सोच करने के लिए संडास जो हुआ करते थे, बड़े से ऐसे ऊपर बना था और नीचे खड्डा हुआ करता था, और उसको पीछे से बाहर से वो मैत्र साफ करके जाते थे। तो कहा इस खड्डा साफ पड़ा है, इसके अंदर जाके बैठो। तो संडास के खड्डे में पीछे से जाके वो जवारी बैठा। राजा जल्दी वापस क्यों आया, उसका पेट खराब था, वो सीधा संडास में गया। अब संडास में गया एक बार दो बार तीन बार, इसका क्या हाल हुआ होगा जवारी का। राजा वापस जब ऑफिस गया, जवारी बाहर निकला, बाहर निकला, रानी ने कहा नहा धो लो, नहा धो लिया, अपना सामान उठाया, चला गया। दूसरे दिन फिर रानी ने भेजा किसी को, इसको बुलाओ। बोला मेरे को संडास में नहीं बैठना। बोला इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है ये रानी है हमारी बुद्धि, और माँ का गर्भ है, मलमूत्र की थैली के बीच में हमको आना पड़ता है, ऐसे उल्टा लटकना पड़ता है। ये बुद्धि आत्मा को अपने आप खींचती है, आओ आओ तेरे को भोग कराएंगे, ये पुरंजनी बुद्धि है। और कल आपने भीष्म पितामह की बुद्धि को सुना था, वो भगवान को अर्पण करना चाहता है, और ये बुद्धि आत्मा के साथ तदात्म्य करके शरीर में भोग करना चाहती है। जब मलयाध्वज राजा बना पुरंजनी, और पुरंजन विदर्भी बना, उसका नाम विदर्भी है, मलयाध्वज साधु संग करने लगा। ए राजा था, एक दिन राजा का मृत्यु हो गया, पुरंजनी जो 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 विद्रोही थी वो पुरंजन था, वो रोने लगा। उस वक्त भगवान वापस आया ब्राह्मण के रूप में, कहा तुम मुझे जानते हो, मैं तेरा अज्ञात मित्र हूं, ये तुम जिसके लिए रो रहे थे ये पुरंजनी पहले थी और तुम पुरंजन थे, अब ये स्त्री हो गई और तुम पुरुष हो गए हो, तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा साथी हूं। तब उसको समझ में आया कि भगवान हमारा सच्चा साथी है। और ये कथा बताई तो प्राचीन बरहित महाराज राजपाट छोड़ के भगवान का भजन करने चला गया कि मेरे को संसार में फंसना नहीं है। प्राचीन बरहित के 10 पुत्र थे, उनका नाम था प्रचेता। ये 10 प्रचेता पिता ने कहा तुम्हें राज करना है, लेकिन राज करने से पहले उन्होंने कहा तपस्या करेंगे। वो तपस्या करने जा रहे थे, एक सरोवर के अंदर से आवाज आ रहा था, वो खड़े हो गए। भगवान शंकर बाहर निकले, कहा तुम पिता की आज्ञा का पालन करने जा रहे हो, 10 भाई आपस में एक राय हो, कोई झगड़ा नहीं है, मैं आपके ऊपर प्रश्न हूं, मैं आपको एक मंत्र देता हूं रुद्र गीत, इसका आप जप करोगे आपको भगवान विष्णु मिलेंगे। आज शंकर जी गुरु के रूप में इनको मिले हैं, और ये प्रचेता समुद्र के किनारे गए हैं और तपस्या कर रहे हैं जल के बीच में, साक्षात वो रुद्र गीत को गा के भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान विष्णु उनको दर्शन देते हैं। प्रचेताओं को भगवान का दर्शन हो गया, और प्रचेता वापस लौटने के समय भगवान ने कहा कि अब जाओ राज करो। वापस लौट के आए तो पिताजी तो पहले ही राज छोड़ के चले गए थे, जंगल बन गया था चारों ओर से, इनको क्रोध आ गया। अरे भगवान का दर्शन करके आए, शंकर जी से दीक्षा लेके आए, फिर भी क्रोध आ गया, और योग अग्नि से सारे जंगल को जलाने लगे। वनस्पतियों का राजा चंद्रमा प्रकट होके कहता है ये भी आपकी प्रजा है, ये वृक्ष पौधे पेड़ ये भी आपकी प्रजा है, इसको जलाओ मत, मेरे पास मृषा नाम की वनस्पतियों की कन्या है जिसको मैंने अमृत पान कराया है, मैं आपको विवाह में देता हूं। और 10 प्रचेताओं ने मृषा के साथ विवाह कर लिया। और आप कल आपको दक्ष की बात सुनाई थी, दक्ष को कौन सा सिर लगाया शंकर जी ने, बकरे का, उसको आई लजा, बकरे का सर उठा के कहां घूमेगा, वो चला गया अगमर्षण नाम की जगह पे, जहां आदमी पाप धोते हैं विंध्या पर्वत में, बड़ी तपस्या की, भगवान विष्णु प्रकट हुए, उसको कहा तुम अब 10 प्रचेताओं के पुत्र में पैदा पुत्र बन के पैदा हो। तो मृषा और 10 प्रचेताओं के पास वो दक्ष दोबारा पैदा हुआ, और ये दक्ष प्रजापति आज क्षत्रिय हो गया, पहले ब्राह्मण था, अब इसको शरीर मानव जैसा मिला। दक्ष प्रचेता राजा बने, राज कर रहे थे, भगवान प्रसन्न हुआ कि आप भाइयों में संदेह प्रेम है, आपस में लड़ते नहीं हो, पिता की आज्ञाकारी हो, इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। प्रचेताओं के पास नारद आए, नारद ने उनको बताया एक जन्म तो माता पिता से होता है, वो तो सबको मिलता है, पशु पक्षी को भी मिलता है, लेकिन दूसरा जन्म होता है गुरु के शरण में जाके शास्त्र का पाठ करे तो आदमी ब्राह्मण कहलाता है, द्विज कहलाता है, और वेद पढ़ेगा तो विप्र बनेगा। और एक भगवान की उपासना करनी चाहिए, गली गली में, घर घर में, कोने कोने में, इधर देव उधर देवता, इधर ये, उसकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं। दो उदाहरण देते हैं कि पेड़ है, उसके शाखा है, उसके पत्तियां हैं, उसके फूल हैं, उसके फल हैं, लेकिन पानी तो जड़ में देंगे तो पेड़ हरा भरा होगा ना? पत्तियों के ऊपर पानी डालेंगे तो पेड़ हरा भरा होगा क्या? डाली के ऊपर डालेंगे तो हरा भरा होगा क्या? नहीं ना। काम हाथ करता है, काम दिमाग से होता है, करता हाथ है, चलता पांव है, लेकिन भोजन पेट में डालते हैं। हाथ अगर कहे मैंने कमाया है मैं खाऊंगा, तो गुलाब जामुन हाथ के ऊपर रख के खड़े रहो, पेट नहीं भरेगा और वो हाथ भी थक जाएगा। पेट में भोजन डालेंगे तो माथे को भी शक्ति मिलेगी, हाथ को भी मिलेगी, पांव को भी मिलेगी, पेट को भी मिलेगी। जड़ में पानी देना और पेट में भोजन डालना सबको सुरक्षित करता है। ऐसे भगवान एक की भक्ति करने से सब देवी देवता पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। सबकी अलग भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा सुंदर उपदेश नारद जी ने प्रचेताओं को दिया। और यहां चौथा स्कंद पूर्ण आहुति पे पहुंचता है। प्रचेताओं को भी भगवान की प्राप्ति हो गई। प्राचीन बरहित प्रचेता ये सब चौथे अध्याय में आ गए। चौथे स्कंद में, पांचवें स्कंद में ब्रह्मा जी स्वयंभू मना का बड़ा पुत्र प्रियव्रत नारद का शिष्य है, संन्यास की तैयारी कर रहा है, राज नहीं करूंगा। स्वयंभू मनु ने कहा बेटा बड़े पुत्र का वंश ही पूरा हो गया, ध्रुव महाराज का वंश पूरा हो गया मेरा, अब आप राज नहीं करोगे तो मैं कब भक्ति करने जाऊंगा? बोला मैं संसार में नहीं फंसना चाहता हूं। स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी को ले आए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा देखो, मैं ब्रह्मा और शंकर और ये इंद्र और चंद्र, ये सारे देवता भगवान की आज्ञा से काम करते हैं, और आपको पिताजी की आज्ञा पालन करके राजा बनना चाहिए। राजा होते भी भगवान को नहीं भूल सकते। प्रियव्रत ने कहा ब्रह्मा जी वेदों के आचार्य हैं और ये मनु स्मृति का आचार्य हैं, दोनों मेरे को आज्ञा दे रहे हैं, तो मेरे को आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अपने गुरु नारद को प्रणाम किया। नारद ने अपने पिता ब्रह्मा के सामने, ब्रह्मा वहां, ब्रह्मा उनका पिता बैठा है, गुरु बैठा है। प्रियव्रत ने कहा महाराज आप आज्ञा दीजिए, मैं पिताजी और दादाजी की आज्ञा मान के राज करूंगा। नारद ने भी आशीर्वाद दिया, प्रियव्रत राजा बने। प्रियव्रत जब राजा बने तो रात होती थी, वो कहता अंधेरा क्यों होता है, अपने रथ के ऊपर चले और पर्वत के ऊपर जहां से सूर्य घूमता है वहां इसका रथ घूमे, रात को दिन में बदल दिया, काल के ऊपर विजय प्राप्त की। उनके रथ के पहियों से सात समुंदर बन गए, सात द्वीप बन गए, और उनके पुत्र सात द्वीपों के अधिपति हो गए। प्रियव्रत महाराज को एक पुत्र पहले हुआ और उस पुत्र को राज देकर, और प्रियव्रत महाराज फिर वापस नारद जी के पास गए और भगवान की भक्ति करने लगे। आज ये जो पुत्र प्रियव्रत का है अग्निधर, इसके मन में अप्सरा को प्राप्त करने की इच्छा हुई। ब्रह्मा जी ने अप्सरा भेजी, इसको अप्सरा में मोह हो गया, लेकिन जो भक्ति प्रियव्रत थी उसमें से उनको एक पुत्र हुआ और ये नाभि नाम का पुत्र आगे हुआ, और उसको वो संतान नाभि ब्राह्मणों के, ब्राह्मणों ने यज्ञ कहा कि आप जैसा भगवान पुत्र चाहिए इसको, तो भगवान नाभि के घर में ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। तो प्रियव्रत के वंश में ऋषभ देव भगवान का अवतार हुआ। ऋषभ कहते हैं जो अपने प्रकाश से स्वयं ही प्रकाशमान हो, और ऋषभ देव भगवान के अवतार होने के ऊपर नाभि महाराज ने उसकी शिक्षा दिलाई, गुरुजनों के पास भेजा, उसको महाराज बनाया, स्वयं नाभि महाराज तपस्या करने चले गए। अब ऋषभ देव का विवाह करने के लिए इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह करना था ऋषभ देव के साथ, वर्षा करना बंद कर दी। ऋषभ देव भगवान के अवतार थे, अपने योग बल से वर्षा कर दी। इंद्र अपनी बेटी को लाया, ऋषभ देव के साथ विवाह कराया। ऋषभ देव को 100 पुत्र हुए, जिसमें से बड़े पुत्र का नाम है महाराज भरत। 100 पुत्रों में से 11 तो नव योगेंद्र बने, साधु सन्यासी बने। 9 सन्यासी बने, ग्यारह योगेंद्र बने और 10 तो राजा बने, 10 वर्षों के राजा बने और बाकी जो 79 थे वो कर्मकांडी ब्राह्मण बने। एक ही पिता के कुछ पुत्र साधु, कुछ क्षत्रिय और कुछ ब्राह्मण का कार्य करने लगे। इसका मतलब जन्म से क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य नहीं है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं गुण कर्म विभागश चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। सो ऋषभदेव महाराज के बड़े बेटे भरत के नाम के पीछे हमारे इस पूरे वर्ष का नाम भारतवर्ष है। इससे पहले इसका नाम था इलावर्त वर्ष, लेकिन महाराज भरत जैसा राजा जब हुआ तब इस वर्ष का नाम भारतवर्ष हो गया। और महाराज भरत ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को लेकर और आर्यवर्त में घूमते हुए और जहां धरती का केंद्र है वहां बैठ के ऋषियों के बीच में उपदेश दे रहे हैं। ऋषभदेव का अपने पुत्रों को एक उपदेश और भारत को लक्षित करके पूरे भारतवर्ष को उपदेश है। ये उपदेश का अध्याय इतना सुंदर है, 5वें स्कंद में बहुत सुंदर अध्याय है। महाराज ऋषभदेव अपने बेटों से पूछेंगे, बेटा आप क्या करोगे बड़े होकर? बोला आपके हम राजा बनेंगे। बोला राजा बन के फिर क्या करोगे? बोला फिर हम भोग करेंगे। बोला ये भोग तो पशु कुत्ते बिल्ले सुअर की जूनी में भी मिलते हैं। बेटा भोग नहीं करना है, दिव्य तपस्या करना है, अनंत सुख को प्राप्त करना है और ब्रह्म सुख को प्राप्त करना है। तपो देवियम पुत्र का, ये मेरे बेटों दिव्य तपस करो। अरे तपस्या तो बॉम्बे वाले भी कितनी बड़ी करते हैं, लोकल ट्रेन में यहाँ 2 घंटे टांगे हुए जाते हैं। इतनी बड़ी तपस्या तो हिरण्यकश्यप ने भी नहीं की थी जितनी ये 30 साल कम से कम चलते हैं ऐसे गाड़ी में आते जाते हैं, देखा है क्या? नहीं, ये तपस्या है। लेकिन ये तपस्या काय के लिए है? पेट भरने के लिए है, इंद्रिय तृप्ति के लिए। दिव्य तपस्या का मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। और फिर ऋषभदेव महाराज कहते हैं वो पिता पिता नहीं है जो अपने पुत्र को धर्म के रास्ते पे न चला सके, वो पति पति नहीं है जो पत्नी को धर्म के रास्ते पे भगवान की प्राप्ति कराने का साधन न जुटाए, राजा राजा नहीं है जो प्रजा को, और गुरु वो नहीं है जो अपने शिष्य को भगवान से न मिला सके। उसको गुरु होना ही नहीं चाहिए। बड़ी सुंदर शिक्षा है ऋषभदेव महाराज की, कभी पढ़ना चाहिए संतान को देने के लिए। अब ऋषभदेव महाराज राजपाट छोड़ के अजगर वृत्ति से रहने लगे, जंगल में पड़े हैं, पत्थर मुंह में डाल दिया, आग लगी, जंगल जला, ऋषभदेव महाराज को कोई चिंता नहीं थी। ऋषभदेव महाराज के ऐसे रहने के पीछे जैन धर्म बना, जैन धर्म ऋषभदेव महाराज के पीछे अनुयायियों ने बनाया। वो कुटकल और यहाँ केरल की तरफ जगह है, वहां का अरण नाम का राजा था, उसने वैसे ही किया करने लगा जैसे ऋषभदेव करता था। लेकिन ऋषभदेव तो मलमूत्र त्यागता था तो 10 किलोमीटर तक अगरबत्ती की खुशबू आती थी, वो तो भगवान के अवतार थे। महाराज भरत बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए, राजपाट को छोड़ के नेपाल में गंडकी नदी के किनारे पुलह आश्रम में सुबह दोपहर शाम स्नान करें, भगवान का भजन करें और तपस्या करने के लिए चले गए। भाव की स्तर के ऊपर पहुंच चुके थे, राजपाट का त्याग किया था, विरक्ति ले ली थी। लेकिन वहां एक दिन अचानक देखा एक गर्भवती हिरण नदी में पानी पी रही थी, पीछे शेर ने धाड़ा, हिरण ने जंप लगाया, दूसरे तरफ गई, बच्चा नीचे गिर गया, बच्चा बच गया, हिरण मर गई। महाराज भरत के हृदय में दया आ गई, इस छोटे हिरण के बच्चे का मैं पालन करूं, इसकी मां मर गई। दया आना सात्विक वृत्ति है, आनी चाहिए, लेकिन आसक्ति होना रजोगुण हो गया। हिरण के बच्चे को घर में लाया, अब उस बच्चे को दूध पिलाए खिलाए, अब स्नान कम हो गया, पूजा पाठ कम हो गया, हिरण के बच्चे में मोह हो गया। लेकिन हिरण का बच्चा तो आकर बड़ा हो गया तो हिरणों के साथ घूमेगा, राजा के पास तो नहीं बैठेगा। एक दिन हिरण का बच्चा आया ही नहीं शाम को। महाराज इसको ढूंढते ढूंढते गए, किसी पहाड़ के ऊपर चढ़े और नीचे गिरे, और गिरते समय मरने के समय हिरण की याद थी, दूसरे जन्म में महाराज हिरण के शरीर में आ गए। लेकिन उनको पहले जन्म की हुई भक्ति भूली नहीं, हिरण के शरीर में पुलह आश्रम में आके बैठ गए और वहां बैठ के अपने दिन गिनने लगे। जिस दिन दिन पूरे हुए वो ब्राह्मण के घर में जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। तीन जन्म की कथा है भरत महाराज की। भक्ति नाश नहीं होती है और दूसरा जन्म होता है, दो बातें सिद्ध होती है। भक्ति नाश नहीं हुई, हिरण के शरीर में भी भक्ति गई नहीं, उनकी स्मृति बनी रही। और जब जड़ भरत बने तो पिताजी ने संसार में उसको फंसाना चाहा, वो बिल्कुल नहीं फंसे। पिताजी कहे हाथ सोच से होके हाथ धोना चाहिए, वो हाथ धो के फिर सोच में जाए, उल्टा करे जानबूझ के, ताकि कोई मुझसे संसार में। पिताजी के मरने के बाद भाइयों ने और भाभियों ने तो उसको खाना देना ही बंद कर दिया, जला कटा देते थे, जो बचा होता काम तो करता नहीं है कुछ, गैया चराने के लिए भेज देते थे। एक दिन वो जंगल में बैठा हुआ था तो डाकुओं को किसी की बलि चढ़ानी थी, इसको अच्छा और तकड़ा मोटा देखा, ले गए और काली देवी को बड़ी चलाने के लिए इसको स्नान कराया, अच्छा भोजन कराया, फिर काली देवी के सामने ले जाके खड़ा किया और तलवार डाकू के सरदार ने निकाली, मूर्ति से देवी प्रकट हुई और वही तलवार खींच के और डाकुओं को मार दिया और भगवान के भक्त की रक्षा कर दी। तो जड़ भरत को माता देवी की बलि चढ़ाने के लिए गए, देवी ने अपने भक्तों डाकुओं को मार दिया, लेकिन जड़ भरत को जीवित छोड़ा। एक दिन जड़ भरत महाराज बैठे हुए हैं, सिंध और सोवेर के महाराज रघुगण पालकी में जा रहे हैं गंगा सागर। कहते बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, गंगा सागर तीर्थ में एक बार करके आओ। ये अभी महीना जो चल रहा है ना, मकर संक्रांति का महीना, अब मेला चल रहा है वहां गंगा सागर पे। इस वक्त गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला होता है, लोग स्नान करने जाते हैं जहां गंगा समुद्र में मिलती है। तो महाराज रघुगुण की पालकी उठाने वाले में एक पालकी वाला बीमार हो गया। इस मोटे तकड़े को देखा, कहा कि तुम पालकी उठाओ, ये तो चला गया पालकी उठाई, लेकिन ये तो दयालु ईचा नीचे देखे कि कोई कीड़ी मकोड़ी आई है, चुंटी आई है, तो पांव इधर रखे उधर रखे तो पालकी ऊपर हिले, पालकी हिले तो महाराज रघुगुण कहता है कि तुम ठीक नहीं चल रहे हो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तीन बोलते महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, ये नया है ये ठीक नहीं चल रहा है। महाराज ने कहा तुम कमजोर हो, थक गए हो, चल नहीं पाते हो, भूखे हो, नहीं जानते हो मैं महाराज हूं, तुम ठीक नहीं चलोगे तो तुम्हें सीधा करूंगा। आज तक कभी नहीं बोला था जड़ भरत, आज पहली बार बोला, बोला महाराज जड़ मैं पतला हूं, मोटा हूं, थका हूं, किसकी बात कर रहे हो, शरीर की बात कर रहे हो, मैं शरीर तो नहीं हूं, और आप अपने आप को राजा समझ रहे हो। अरे मिट्टी से पैदा हुई, मिट्टी से पैदा हुआ पेड़, पेड़ से पैदा हुई पालकी, लकड़ी, लकड़ी से बनी पालकी, और लकड़ी की पालकी के ऊपर मिट्टी का बना हुआ आदमी अपने आप को राजा बना मान रहा है। महाराज रघुगण साधु संग करता था, बोला ये पागल जैसा इतनी आत्मा की बातें कर रहा है। महाराज कूद पड़े नीचे पालकी से और पांव को पकड़ लिए, बोला महाराज मैं ब्राह्मण के अपराध से डरता हूं, आप क्षमा करना, आप कौन है और ये आप उपदेश दे रहे हैं। अरे आपके कंधे पे भार कैसे नहीं होगा, अगर हम आग के ऊपर चावल चढ़ाएंगे तो पहले देगड़ा गर्म होगा, फिर पानी गर्म होगा, फिर चावल गर्म होंगे ना, तो ऐसे आपके ऊपर भार क्यों नहीं होगा। बोला ये शरीर की बात कर रहे हो, आत्मा के ऊपर कोई भार नहीं, आत्मा मोटा नहीं, आत्मा पतला नहीं, हाथी की आत्मा और चींटी की आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अंदर तो आत्मा का साइज तो एक बाल की अगर भार की चोटी के 10,000 छोटे टुकड़ों से भी छोटा है। अब तो महाराज रघुगुण ने कहा मैं जा रहा था गंगा सागर साधु संग करने के लिए, यहां ऐसा गुरुदेव मिल गया है, उसको हाथ जोड़ के बैठे और महाराज भरत ने उनको भवाटी का उपदेश सुनाया कि एक जंगल में आदमी जाते हैं चंदन को उखाड़ने के लिए, कि लाएंगे तो बड़े में धाम में बेचेंगे, लेकिन जब चंदन को लेने जाते हैं तो जंगल में पशुओं के पांव की ज्यादा रास्ते बने होते हैं, जहां गाय बकरी जाती है ना तो पगडंडियां बन जाती है पशु की, और उसमें अगर आदमी चला गया तो कभी भी बाहर निकल नहीं पाएगा, उसमें फंस जाता है। ऐसे जंगल में ये दुनिया रूपी जंगल में जो आया है वो भूल भलाइयों में फंस जाता है। असल में राजमार्ग है भक्ति का, जो भक्ति के राजमार्ग को छोड़ के और दूसरे पगडंडी वाले पशुओं वाले मार्ग में जाएगा, इंद्रिय तृप्ति वाले मार्ग में जाएगा और स्वर्ग आदि के मार्ग में जाएगा, भोग के मार्ग में जाएगा, वो भटक जाएगा, कभी भगवान को नहीं पाएगा। तो रहुगण ने पूछा, आखिर भगवान पाने का रास्ता क्या है? बोला, राजा रहुगण सुनो, जब तक साधु महात्माओं के चरणों की रज में स्नान नहीं करोगे, उनका संग करके उनकी कथा नहीं सुनोगे, उनकी सेवा नहीं करोगे, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ जड़ भारत ने फिर ऐसे कहा कि महाराज आप कौन से देश के राजा हो? बोला, सिंध सुवेर देश का राजा हूं। अच्छा, ये कहाँ है? बोला, भारत वर्ष में। बोला, भारत का नाम कैसे पड़ा? बोला, महाराज भरत से। बोला, वो तो मैं हूं, मैं तुम्हारी पालकी उठा रहा हूं, यही महाराज भरत था पहले। अब रहुगण महाराज ने उसको प्रणाम किया। यहां 15 अध्याय पूरे होते हैं, तब परीक्षित महाराज पूछते हैं, ये भूगोल खगोल कैसे भगवान ने बनाया है? तो 5 अध्यायों में भूगोल का वर्णन है, 5 अध्यायों में खगोल का, तारा मंडल सप्तऋषि का वर्णन है, ये कैसे सूर्य अपना चलता है, कैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है, और फिर दीपों का वर्णन है, जो दीप हैं 7 दीप हैं, उन दीपों में कौन कौन रहता है, वहाँ का कैसी पूजा होती है, फिर जिस द्वीप में हम रहते हैं उसका विस्तार से वर्णन है। आपको मालूम है, जब ब्राह्मण लोग ये आपको संकल्प कराते हैं तब क्या कहते हैं? जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भारत खंडे, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम रहते हैं जम्बू द्वीप में। द्वीप किसको कहते हैं? जिसके चारों ओर पानी हो। हर द्वीप जो है, जम्बू द्वीप के चारों ओर खारे पानी का समुद्र है, और दूसरे जो द्वीप है, किसी के चारों ओर दूध का सागर है, किसी के चारों ओर गन्ने का सागर, जूस का सागर है, किसी के चारों ओर घी का सागर है। किसी ने हमको कहा, प्रभु जी ये घी का, दही का, दूध का सागर ऐसे कैसे होगा? तो हमने बोला, खारे पानी का सागर देखा है? बोला, वो तो यहाँ बम्बई में बड़ा है। तो मैंने कहा, उसके अंदर नमक तुमने डाला कि राजा ने डाला कि तेरे बाप ने डाला? बोला, भगवान ने डाला। बोला, भगवान नमक डाल सकता है तो चीनी नहीं डाल सकता क्या? भाई, खारे पानी के समुद्र को आपने खारा किया क्या? अरे तुम तो उससे नमक बना के खा रहे हो, तो जो नमक डाल सकता है वो चीनी नहीं डाल सकता, वो दूध नहीं डाल सकता क्या? तो जम्बू द्वीप में हम रहते हैं। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। कितने वर्ष है? जो बीच का वर्ष है उसका नाम है इलावर्त वर्ष। वहां जब भगवान शंकर और पार्वती रहते हैं, कोई पुरुष नहीं रहता। एक बार कुछ ऋषि चले गए थे, पार्वती स्नान कर रही थी, पार्वती को अच्छा नहीं लगा, शंकर जी ने कहा कोई पुरुष आएगा स्त्री बन जाएगा। अब कोई वहां जाता नहीं, जाता है वो स्त्री बन जाता। सूर्य वंश का एक राजकुमार वहां चला गया था सदमन्यु, और घोड़े के ऊपर चढ़ चढ़ के चला गया था सिंधी, और वहां जैसे इलावर्त वर्ष में गया, घोड़ा घोड़ी बन गई और सुदामनु लड़की बन गया। जब सुदामनु लड़की बन गया, उस वक्त सूर्य का बेटा और चंद्रमा का बेटा बुध उसके साथ गंधर्व विवाह किया, और उससे पुत्र हुआ, उसका नाम है पुरुरवा, और ये पुरुरवा से चंद्रवंश शुरू होगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। ये कथा कल आएगी, ये 9वें स्कंद की कथा है। तो वहां कोई पुरुष नहीं है, सिर्फ स्त्रियां हैं। एक बार कहीं कुछ मच्छर मरे हुए थे, तो बड़े विज्ञानिक खोज कर रहे थे कि इसमें मछली कौन सी है और मच्छर कौन सा है, क्योंकि मछली से तो मलेरिया होती है, मच्छर से नहीं होता है। तो बड़ा विज्ञानिक लगे हुए थे। एक साधु ने कहा, मैं बताऊं कौन क्या है, ये बोतल के ऊपर मरे हुए हैं ना, ये सब मच्छर हैं, जो आईने के ऊपर मरी हुई है ये सब मछलियां हैं। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे,
हरे
रामा,
हरे रामा,
राम रामा, हरे हरे। तो बीच में इलावर्त वर्ष है। हम एक ये 9 वर्ष जो है उसमें से 8 वर्ष दिखते नहीं है, इसको कहते हैं भौम स्वर्ग। ये पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है। भागवत में 3 स्वर्गों का वर्णन है। एक स्वर्ग लोक, ये हम रह रहे हैं भूलोक, इसके ऊपर भौलोक है, और भौलोक में रहते हैं गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चारण, ये ऊपर रहते हैं हमसे। इससे ऊपर है स्वर्ग लोक, जिसमें इंद्र आदि देवता रहते हैं, भूर भुवस्व। तो एक तो स्वर्ग लोग होगा जहां देवता रहते हैं, इंद्र रहते हैं, एक स्वर्ग इस धरती के ऊपर है, ये 8 वर्ष इसको कहते हैं भौम स्वर्ग। जो स्वर्ग लोक से वापस आते हैं इन 8 वर्षों में 10,000 साल तक जीते हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई अस्पताल नहीं इन वर्षों में। आखिरी 1 साल में 1 बच्चा होता है। तीसरा स्वर्ग है इस धरती के नीचे, उसको कहते हैं बिल्व स्वर्ग। बिल का मतलब धरती के नीचे सूतल लोक जो बलि महाराज का है, वो स्वर्ग से ज्यादा वैभवशाली है। एक ही लोक आंखों से देखा जा सकता है, उसका नाम है भारतवर्ष, जिसमें हम रह रहे हैं। हम रह रहे हैं भारत खंड में, भारतवर्ष इस पूरी पृथ्वी का नाम है। जहां तक खारा समुद्र है और धरती है वो सब भारतवर्ष है। अब उसके नाम लोगों ने बदल दिए, लेकिन भारतवर्ष इतना छोटा नहीं है जितना आज का मैप बना हुआ है, मानचित्र इतना नहीं है, भारत पूरी धरती का नाम भारतवर्ष है। एक वर्ष है उसका नाम है किम पुरुष वर्ष, वहां राम जी की पूजा हनुमान जी करते हैं। एक वर्ष है उसका नाम है हरि वर्ष, वहां नरसिंह देव की उपासना प्रहलाद महाराज करते हैं। ऐसे लक्ष्मी देवी उपासना करती है, ऐसे सब वर्षों के अंदर भगवान विष्णु की उपासना होती है। 5वें स्कंद में भारत वर्ष का बहुत सुंदर वर्णन है। भारत वर्ष का आराध्य देव नर नारायण है और इसकी पूजा नारद जी करते हैं। और देवता कहते हैं भारत वर्ष में जन्म मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। अरे भगवान, हमने कोई पुण्य किया तब हमको देवता बनाया ना, तो पुण्य तो उसके बदले में पूरे हो गए। अगर कुछ बचे हो ना तो हमारे को धरती के ऊपर मानव का जन्म देना, धरती पे इंसान का जन्म मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। न यत्र, देवता कहते हैं, न यत्र वेकुंट कथा सुधा अपगाह, जहां भगवान वेकुंठ नाथ गोविंद कृष्ण विष्णु नारायण की अमृत रूपी कथा न बहती हो, गंगा न बहती हो। न यत्र साधवो तत आश्रयः, जहां साधु संत इन कथाओं का रस न लेते हो। न यत्र यक्मखा यंगा यज्ञ मक्खा उत्समा उत्सव, जहां हरिनाम संकीर्तना का यज्ञ न हो, जहां जन्माष्टमी रामनामी का उत्सव न मनाया जाता हो, गौर पूर्णिमा का उत्सव न मनाया जाता हो। सुरापि लोकम न सेवियत, भले देवताओं का लोक स्वर्ग वो हमको नहीं चाहिए। स्वर्ग लोक में हरि कथा नहीं होती, हरि भक्तों का संग नहीं होता है, भगवान का जन्म उत्सव नहीं मनाया जाता है, हरि नाम संकीर्तन नहीं होता है, जहां ये सब चीजें होती हैं वो स्वर्ग से भी महान है। कितना भाग्य है कि कुन्नीपुर में बैठ के आप भागवत का श्रवण और भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, ये स्वर्ग इसके सामने कुछ भी नहीं। तो यहां 5वें स्कंद में ऐसे खगोल भगोल का वर्णन है, फिर 2 अध्यायों में नरकों का वर्णन है। पापी लोग नरक में जाते हैं, ये नरक लोक नीचे हैं, पाताल नीचे गर्भ सागर के एक कोने में नरक लोक हैं, और वहां संयमपुरी है जहां धर्मराज उनका लेखा चोखा करते हैं। और नरकों का वर्णन करते हुए कहते हैं जगह बहुत, प्लाट बहुत खाली पड़ा है, ऐसा मत समझो कि नरक में कभी भीड़ हो जाएगी। अब नया नरक भी बना है, एक मोबाइल नरक बना है, नया एक आया है कि जितना लोग झूठ मोबाइल के ऊपर बोलते हैं इतना किसी कभी दुनिया में नहीं बोला है। घर में सोए होंगे कहेंगे ऑफिस में है, और कुछ नहीं करते होंगे कहेंगे बिजी है, और पूरा दिन उस मोबाइल के अंदर समय बेकार गंवाते रहते। घंटा एक कथा में आने में नहीं आएंगे, लेकिन 2 घंटे मोबाइल के ऊपर उंगलियां घुमाते रहेंगे। तो एक नरक का, सब नरक में भगवान आपको कभी उस नरक या यमराज के दूतों का मुख भी नहीं दिखाएगा। एक बार कथा में आ जाता है, भगवान का नाम उच्चारण कर देता है, वो दोबारा मानव तो कम से कम बनेगा ही बनेगा, और नहीं तो इतना तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, वो कभी नहीं जाएगा नरक में। लेकिन एक नरक का वर्णन है, घर में कोई मेहमान आए, अगर आप उसको टेढ़ी आंख से देखो तो एक नरक है जिसके अंदर चील उसकी आंखें निकालते हैं। एक ये कथा सुनने से भारतवर्ष में इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि लोग घर के अंदर एक मेहमान का कमरा बनाते हैं, कोई मेहमान आ जाए तो उसको रखेंगे, प्रसाद खिलाएंगे, नहीं तो आंखें निकालेगी चील। एक शिक्षा से इतनी बड़ी परिवर्तन हुआ कि सबने कहा एक हमारी अतिथि के लिए जगह होनी चाहिए, कमरे में गेस्ट रूम बनाते हैं। आदमी घर बनाते हैं गेस्ट रूम, न शहर बनाते हैं तो बाहर धर्मशाला बनाते हैं कि आए तो भारत में कभी होटल नहीं था, ये भारत की संस्कृति नहीं है। महाराज युधिष्ठिर के राज में 5,000 रसोई भोजन बनाते थे, आने वालों को भोजन मिलता था फ्री में। या मंदिर में भी हमारे भक्त कहते हैं यहाँ तो दाल चावल खीर पड़ी होती है, जो आए खाए। ये होटल का पाश्चात्य देशों की संस्कृति है, हमारी संस्कृति में अन्न दूध दही ये बिकने वाली चीज नहीं है, ये तो सेवा में लगती थी। इसके बदले में भगवान, ये सेवा चलती रहनी चाहिए। ऐसे बहुत से मंदिर आज भी भारत में है जहां अन्न क्षेत्र चलता रहता। एक होटल में बाहर लिखा था, आओ खाओ, तुम्हारा बिल तुम्हारे पोतों से लिया जाएगा, तुमसे नहीं लिया जाएगा। वो हमारे ब्रह्मचारी पीछे बैठे हैं, 2-3 बोला ये तो मुफ्त का होटल है और है भी पक्का शुद्ध वैष्णव, चलो चल के खाते हैं। अंदर गए, वो मलाई कोफ्ता भी खाया और शाही पनीर भी खाया और जो रबड़ी खाया। उन्होंने कहा 1500 रुपया बिल दो। उसने बोला हमारे पोतों से लेना। बोला ये तेरे दादे का बिल बचा हुआ है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे दादाजी का है। इसका मतलब हमारे कर्मों का हिसाब जो है वो हमको चुकतू करना पड़ेगा, दादे का बिल चुकाना पड़ेगा। यहाँ पांचवा स्कंद नरकों के वर्णन से पूरा होता है, हम छठे स्कंद में प्रवेश करते हैं। ये स्कंद है पोषण। भगवान अपने भक्तों का कैसे पालन पोषण करते हैं, जैसे माली बगीचा लगाता है ना, तो उसमें कुछ छांटी करता है, कुछ खाद डालता है, कुछ पानी देता है। ऐसे भगवान भी कहीं काट के और कहीं रक्षा करके रक्षण और पोषण करते हैं। तो इस पोषण वाले स्कंद में परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं कि नरकों में इतना बड़ा दुख है, इन लोगों को नरकों के दुख से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सुखदेव महाराज कहते हैं जैसे रोग बड़ा है तो दवाई बड़ी, रोग छोटा है तो छोटी दवाई, पाप किया है तो प्रायश्चित कर लो तो पाप मिट जाएगा। परीक्षित महाराज कह रहे हैं पहले पाप करे, फिर उसको धोए, फिर वापस पाप करे, ये तो हाथी का स्नान हो गया। नदी में स्नान करके ऊपर मिट्टी फेंक दे तो इसका फायदा क्या हुआ। सुखदेव महाराज समझा ये भक्त है, तो कहा अगर तपस्या करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, अज्ञान चला जाएगा तो फिर पाप ही नहीं करेगा। परीक्षित महाराज कहते हैं सबको ज्ञान तो नहीं होगा, सब तपस्या तो नहीं कर सकेंगे, सबका उद्धार तो नहीं होगा। तब परीक्षित महाराज के भाव को देखकर सुखदेव महाराज कहते हैं अगस्त ऋषि ने भगवान का पूजा करते हुए शब्द के साथ ये कथा कही है कि भगवान का नाम उच्चारण करने से अनंत जन्मों के पाप जल के खाक हो जाते हैं। मैं आपको एक इतिहास बताने जा रहा हूं, 3 अध्यायों में भगवान के नाम से कैसे पाप जड़ से उखड़ जाते हैं, अविद्या नाश हो जाती है, पाप करने का प्रवृत्ति खत्म होती है और दुख नाश हो जाता है। यहां नाम की 3 अध्याय, नाम से भगवान कैसे पोषण करता है, फिर रूप से कैसे पोषण करता है, फिर नाद से कैसे पोषण करता है, ऐसे भगवान 14 रूप से पोषण करते हैं। इनका वर्णन 6 स्कंद के अध्यायों में है। तो 3 अध्यायों में जो कथा है वो अजामिल के उद्धार की कथा है। अज कहते हैं वैसे माया को, और अज बकरी को भी कहते हैं। अज मेल मतलब जिसने माया से मेल किया वो संसार में फंस गया। अजामिल एक ब्राह्मण था, यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, घर में नारायण की सालंग्राम शिला है उसकी पूजा करता था। इसका मतलब ज्ञान था, तपस्या थी, लेकिन हृदय में अभी पाप की जड़ पड़ी थी, पाप करने की प्रवृत्ति पड़ी थी, अज्ञान पड़ा था, अविद्या पड़ी थी। ये अजामिल एक दिन जंगल में लकड़ी और फल फूल लेने के लिए गया। एक लंपट बदमाश को, किसी वेश्या को आलिंगन करते हुए देखा। कहा नहीं मैं ब्राह्मण हूं, मुझे देखना नहीं चाहिए। लेकिन मन ने कहा देखने में क्या है, उसकी नजर एक बार देखा फिर दोबारा देखने की इच्छा हुई। उसका यज्ञ धर्म पूजा सब धरा रह गया। उसके मन में बड़ी हलचल चली। घर आया और उस वैश्या को ढूंढ के निकाला और वैश्या को प्रसन्न करने के लिए अपनी नव युवती ब्राह्मण पत्नी को छोड़ दिया, पति पति पिता को छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया, उनका धन भी उठा के ले गया, उनको दुख दिया और वैश्या को प्रसन्न करने लगा। वैश्या को घर में बिठा दिया। वैश्या के कुछ संतान था पहले भी, और इसके साथ इसने 80 साल की उम्र में एक छोटा बच्चा पैदा किया। साधु संत कुछ जा रहे थे, उन्होंने कहा यह है तो ब्राह्मण, वैश्या के संग में इसका पतन हो गया, इसका उद्धार करना चाहिए। साधु ने दरवाजा खटखटाया, वैश्या ने दरवाजा खोला कि हमारे घर में सूतक लगा हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है, महाराज कुछ दे नहीं पाएंगे। संतु ने कहा तुम्हारे घर में सूतक नहीं, ग्रहण लगा हुआ है, हम कुछ लेने नहीं आए हैं, देने आए हैं। देखो साधु लेने के लिए नहीं है, साधु देने के लिए। जो जितना ले उतना दे, वो व्यवसाय बिजनेसमैन है, 10 रुपये की चीज लो 10 रुपया दो। जो कुछ भी नहीं ले सब कुछ दे, वो साधु, और जो सब कुछ ले और कुछ ना दे, वो असुर। ये तीनों की परिभाषा है। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो मिश्रा जी कह रहे आप यहां आए हैं धोती पहन के घूम रहे हैं, अमेरिका में पैंट पहनो, टाई पहनो, कोट पहनो, कांटे से चमचे से खाओ। प्रभुपाद जी ने कहा देखो भारतवर्ष से कोई अमेरिका में आता है या तो विद्या प्राप्त करने आता है या कोई धन कमाने आता है, तो यहां से लेने आता है, इसलिए इन जैसा बनना पड़ता है, सूट बूट पहनना पड़ता है। हम तो यहां कुछ लेने नहीं आए, हम इनको देने आए हैं, हम इनको सुखी सुखी होने का साधन देने आए हैं, हम इनको भगवान का प्रेम देने आए हैं, गीता का संदेश देने आए हैं, तो हम इन जैसे क्यों बने, इनको हम जैसा बनना पड़ेगा। और प्रभुपाद ने तो धोती नहीं छोड़ी लेकिन लाखों और को धोती पहना दी। जब आप देने जाते हो तो लोग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब आप लेने जाते हो तो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। ये दुनिया का नियम है। ऐसे मांगने वाले जो होते हैं ना, ऐसा मांगने वाला एक था, डूब रहा था, तो किसी ने कहा हाथ दे दो, नहीं, कोई खड़ा था बोला इसने देना सीखा ही नहीं, उसको बोलो हाथ लो तभी अब निकलेगा, नहीं तो मर जाएगा। हाथ देगा नहीं, मरता है फिर भी हाथ नहीं देगा, बोला मेरा हाथ लो, दोनों हाथ से पकड़ लिया। तो लेने के लिए आदमी दोनों हाथ से पकड़ते हैं, और जब देने की बात होती है तो टेबल के नीचे भान छुप जाती है। एक सेठ के पास भक्त ला गया, कहा मंदिर के लिए कुछ सेवा चाहिए, सेठ जी टेबल के नीचे छुप गए। बोला सेठ जी निकल के आओ, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। बोला सेठ घर पे नहीं है। बोला तुम ही सेठ बन जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे लोग देने के समय बहुत बड़े सेठ ही अपने आप कहते मैं सेठ ही नहीं हूं, वो सेठ चला गया कहीं, ऐसे बोलते हैं। तो संतु ने कहा हम देने के लिए आए हैं, कुछ नहीं चाहिए। एक काम करना, सीधा अगर इनको कहा कि नारायण का नाम जपो तो ये तो अब पाप के रास्ते में चले हैं, भगवान का नाम इनके मुख पे नहीं आएगा। वैद्य जब कोई कड़ी दवाई देता है ना तो कहता है मधु के साथ मिला के खाओ, मधु मीठी है, दवाई कड़ी है तो मीठी हो जाएगी। तो आपका जो बच्चा हुआ है ना, इसका नाम नारायण रख देना, बस हम इतना ही करने के लिए आए हैं। हाँ अच्छा, हम अपने बच्चे का नाम नारायण रख देंगे। नारायण भगवान का नाम है, पुत्र मोह की मधु में मिलाकर दे दिया। अब अजामिल को पत्नी कहती है हमारे बेटे का नाम नारायण है, संत कह के गए हैं। अजामिल कहता है नारायण पानी लाओ, नारायण मेरे चप्पल लाओ, नारायण रोटी लाओ, सुबह से शाम तो नारायण 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 जप रहा है। एक दिन नारायण पास में खड़ा था, 3 जमदूत लाल खड़े बाल, आंखें लाल खड़े बाल, देखे आजकल जमरू देखना नहीं, बहुत से लड़के ऐसे ऐसे बाल खड़े करते हैं, क्या लगाते हैं पता नहीं, रंग भी लाल करते हैं, यमदूतों जैसा लगते हैं। तो खड़े बाल 3 यमदूत क्यों आते हैं, एक शरीर से किए हुए पाप, एक मन से, एक वाणी से, सबके पास अपना अपना फाइल होता है। उन्होंने अजामिल के गले में फांसी डाली, जम फांस डाला। अजामिल ने अपने बच्चे की ओर देखा, नारायण जोर से पुकारा, इसलिए या तुम भाग जाओ, ये तुम डर ना जाओ, अथवा मेरे को छुड़ाओ, जो भी हो। उसने नारायण कह दिया, इतनी देर में 4 विष्णु दूत वहां प्रकट हो गए। 4 चतुर्भुज रूप में विष्णु दूत प्रकट हो गए और यमदूतों को कहा, तुम इसको क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? धर्म क्या है तुम जानते हो? बोला हम जानते हैं धर्म, शास्त्र में लिखा है उसके नियम का पालन करे धर्म, उसके विपरीत चले अधर्म। बोला ये तो ठीक है, तुम न्याय करने वाले अगर किसी को निष्पाप को दंड दोगे तो आदमी न्याय के लिए किसके पास जाएगा? बोला ये बड़ा पापी है, ब्राह्मण था, वैश्या के साथ विवाह किया, सब दुनिया के पाप किए। बोला तुम्हें मालूम नहीं इसने नारायण का नाम जपा अंत में? बोला नारायण भगवान का नाम नहीं जपा, अपने बेटे का जपा। बोला बेटे का नाम तो अभी रखा है, नारायण तो असल में भगवान वैकुंठ नाथ का नाम है, और एक बार नारायण के नाम उच्चारण करने के बाद अगर कोई पाप ना हो तो अनंत कोटि जन्मों के पाप जल के राख हो जाते हैं। शर्त ये है, दोबारा पाप हो गए तो सब जाग जाएंगे। तो इसने अंत समय पाप, अब जब नारायण का उसके बाद तो कोई पाप नहीं किया ना, तो इसलिए इसके साथ पाप खत्म हो गए। तुम इसको छोड़ो और जाओ। यम दूतों से बचा लिया अजामिल को, एक मौका मिल गया। अनजाने में नारायण का नाम जपा था, देखो ज्ञान तो था, पूजा भी थी, लेकिन अंदर में अज्ञान अभी तक पड़ा था। वो केवल भगवान के नाम से जाता है और किसी साधन से नहीं जाता है, न ज्ञान से जाता है, न तप से जाता है, न पूजा से जाता है, न यज्ञ से जाता है, केवल भगवान की शुद्ध भक्ति से जाता है। अब अजामिल ने सोचा कि यमदूत चले गए हैं, इन विष्णु दूतों से बात करूं, तब तक विष्णु दूत भी चले गए, लेकिन वैष्णव का दर्शन और संग हो गया। अजामिल वहां से उठा, सीधा गंगा के किनारे चला गया और नारायण का नाम सचपच का जपा। एक रशिया का भक्त अपनी कथा बता रहा था कि मैं बहुत बड़ा डान था, ये सब नशे की पदार्थ इधर उधर करता था, मेरे पीछे पुलिस पड़ी थी, मैं उनसे भागता हुआ एक हरे कृष्णा वाले मंदिर में चला गया, वहां उनकी धोती बाहर लटक रही थी लाल, मैं पहन लिया और एक माला की झोली हाथ में डाल के ऐसे बैठ गया। पुलिस आई, पूछा कहाँ है, बदमाश कहीं आया? उन्होंने बोला यहाँ तो सब भक्त बैठे हैं। पुलिस चली गई, मैंने कहा झूठ मूठ की धोती पहनी और माला हाथ में ली तो पुलिस के बच गया, सचपच अगर माला जपूंगा तो यमराज से बच जाऊंगा ना, वो भक्त बन गया, सब कुछ काम छोड़ के भक्त बन गया। तो आज यमदूत वापस चले गए, यमराज को कहा ये लो आपका फंदा, तुम ही मैं स्वामी हो या और भी कोई स्वामी है संसार में? हम जब को किसी को पकड़ने जाते हैं पकड़ के लाते हैं, आज एक चार वहां विष्णु के दूत आ गए और हमारे को वहां से धक्के देके भगा दिया। यमराज नाचने लगा, बोला यमदूतों के मुख से विष्णु का नाम? बोला तुम भाग्यशाली हो, यमदूतों का दर्शन, विष्णु दूतों का दर्शन करे आए यमदूत। बोला यमदूत किसको बनाया जाता है? जो 100 बार नरक में जाता है ना, सब नरकों का जिसको पता होता है ना, जैसे जो थाने में जो जेल में होता है एक को जमादार बनाते हैं उन कैदियों में से, जो सब के नेम जानता है। तो ये तो यमदूतों को कहा तुमको विष्णु दूतों का दर्शन हो गया, तुम भाग्यशाली हो। यमराज ने कहा देखो भगवान के धर्म का नेम हम 12 महाजन थोड़ा जानते हैं और कोई नहीं जानता है। 12 महाजनों के नाम लिया कि शंकर जानता है, कपिल जानता है, प्रहलाद जानता है, बलि जानता है, स्वयं मनु जानता है, जनक जानता है, मैं जानता हूं, लेकिन सब नहीं जानते हैं। धर्म तो भगवान ने दिया है, भागवत धर्म और है, आप तो वेदों के धर्म की बात कर रहे हो, ये भागवत धर्म है। और फिर यमराज ने कहा मैंने आपको एक बात नहीं बताई, जिसके गले में तुलसी की कंठी माला हो, जिसके माथे के ऊपर ऊर्ध पूर्ण तिलक हो और जिसके मुख में राम नाम हो, गोविंद हरे कृष्ण राम हरि, उसको कभी मेरे पास नहीं लाना, उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। और जिस मूर्ख ने कभी भगवान का नाम जपा ना हो, भोग विलास में फंसा हो, वो हमारा ग्राहक है, उसको पकड़ के यहां लाया कर। बहुत अच्छे 3 श्लोक है, किसको लाना किसको मत लाना, यहां 3 अध्यायों में अजामिल का कैसे उद्धार हुआ नाम जपने से। तो नाम जपना कभी नहीं छोड़ना, आप नाम जपना नहीं छोड़ना, भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद दर्शन से बकरे के सर वाले दक्ष को प्रचेताओं के पुत्र के दक्ष के रूप में जन्म मिला, ये कथा आती कि भगवान ने दर्शन दिया अपने रूप से दक्ष का पुत्र दिया। उसके बाद इस दक्ष ने मन से कुछ सृष्टि की बड़ी नहीं। फिर इसने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, कहा बेटा तपस्या करने जाओ। वो नारायण सरोवर तपस्या करने जाके चले गए भुज में, कच्छ में। नारद ने जाके उनको उपदेश दे दिया कि संसार दोनों तरफ चलने वाली नदी है और एक खड्डे में गिरता है, कोई बाहर नहीं निकलता है। ये जन्म और मृत्यु यहां चलता रहता है। एक पुरुष भगवान है, बाकी सारी संसार माया है। उनके मन में आया कि हमें संसार में फंसना ही नहीं है। वो 10,000 साधु बन गए हरियाशो। नारद ने कहा दक्ष को आपके पुत्र साधु बन गए, बोलो तुमने उनको साधु कैसे बना दिया और आज भी नहीं किया अभी तक। 1,000 पुत्र फिर दक्ष ने उत्पन्न किए, हरियाशो, शबलाशो और हरियाशो। ये फिर वही तपस्या करने गए, नारद ने वही उपदेश दिया, वो भी साधु हो गए। दक्ष को क्रोध आया, नारद तुमको शराब देता हूं, कहीं 3 दिन नहीं तुम रुकोगे नहीं, चलते फिरो। अभी दक्ष पहला शंकर का अपराध अभी पीछे पड़ा था, नारद को शराब दे दिया। नारद खुश हो गया, ना आश्रम बनाना, मंदिर बनाना नहीं, मठ मंदिर बनाना ही, घूमते फिरेंगे, भगवान का भजन करेंगे, बहुत अच्छा है। नारद ने शराब नहीं दिया वापस। और ये दक्ष को फिर ब्रह्मा जी ने कहा अब आप पुत्रियां पैदा करो, पुत्र पैदा करोगे तो ये नारद साधु बना देगा। पुत्रियों के पास नारद ब्रह्मचारी आएगा नहीं। 60 पुत्रियां उत्पन्न की दक्ष ने। उन पुत्रियों का विवाह ऋषियों के साथ हुआ जिनसे हमारा वंश चला। कश्यप को 13 पुत्रियां दे दी, धर्म को 10 पुत्रियां दे दी। इनके साथ इन पुत्रियों का सब विवाह किया दक्ष ने। इसके बाद कथा आती है, इंद्र अपनी सभा में बैठा था। हाँ हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंद्र आसन के ऊपर बैठा है, सारे देवता गण बैठे हैं, मरुत गण बैठे हैं, वरुण बैठा है, चंद्र बैठा है, सब बैठे हैं। उनके गुरुदेव बृहस्पति अंदर आए, इंद्र ने देखा अनदेखा कर दिया, गुरु का सम्मान नहीं किया, गुरु वहीं से वापस चले गए। गुरु के जाने के बाद इंद्र को लगा कि मुझसे अपराध हो गया, गुरु का आदर नहीं किया। हम समझते हैं कि रोज आते हैं इसलिए, ऐसा तो नहीं है। रोज आते हैं तो रोज मंदिर में जाते हैं तो रोज प्रणाम करना चाहिए, रोज गुरु को मिलते हैं क्या, एक दिन में 10 बार मिले तो 10 बार प्रणाम करना चाहिए। इंद्र ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन गुरु मिला नहीं ढूंढने से। अब इंद्र ये पता लगा असुरों को, असुरों ने कहा जब इनका कोई गुरु नहीं है तो इनको हराना बहुत आसान है। इंद्र परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम दूसरा गुरु विश्व रूप को कर लो, ये जो तुष्टा का बेटा है, प्रजा आदित्य तुष्टा का बेटा जो विश्व रूप है, इसके पास एक बहुत अच्छी विद्या है, तुम जाके इसको गुरु कर लो। इंद्र देवताओं के साथ गया, विश्व रूप को गुरु के रूप में वर्ण किया। विश्व रूप के पास नारायण कवच की विद्या थी, उसने नारायण कवच की विद्या इंद्र को दे दी। जिस नारायण कवच के नाम का उच्चारण करके शरीर के ऊपर धारण करने से मरता नहीं है आदमी किसी अस्त्र शस्त्र से। एक दिन विश्व रूप यज्ञ करा रहा था इंद्र का, उसका नाने का कुल असुर है, वो एक आहुति दे रहा था इंद्र को और एक दे रहा था अपने नाने के कुल असुरों को। इंद्र ने कहा यज्ञ हमारा पुरोहित हमारा और भला कर रहा है हमारे शत्रु का, इंद्र ने उसकी गर्दन काट दी। इंद्र को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा, इंद्र ने अपनी गलती को माना तो 4 ने इंद्र के पाप को 4 भाग में ले लिया। पृथ्वी ने कहा मैं इंद्र आपका चौथा हिस्सा ब्रह्म हत्या का पाप लेती हूं, जहां बंजर जमीन है, पथरीली जमीन है, कोई खेती बाड़ी नहीं होती है, वहां ब्रह्म हत्या का पाप है। इंद्र ने कहा पृथ्वी मैं तुम्हारे को एक वरदान देता हूं, कहीं खड्डा खोदेगा कुछ भी करेगा समय आने के ऊपर समतल हो जाएगी। एक भाग पानी ने ले लिया इंद्र से, कहा ब्रह्म हत्या का एक भाग मैं लेता हूं। जल ने कहा जल में 2 दिन के बाद बुदबुदे हो जाते हैं, पुराने जमाने में लोग मटके का जल रोज बदलते थे, पता होता था कि इसके अंदर ब्रह्म हत्या का पाप आ जाएगा। अब तो लोग महीनों का जल पीते रहते हैं, ब्रह्म हत्या क्या करेगी, बोतल का पानी कब का भरा हुआ है कुछ पता नहीं। और इंद्र ने वरदान दिया पानी को के दूध में डालेगा तो पानी दूध के भाव में बिकेगा, दाल में डालेगा तो 10 के जगह पे 40 खा जाएंगे। एक भाग इंद्र की ब्रह्म हत्या का पेड़ ने ले लिया, वृक्ष ने ले लिया, उसके अंदर से रस चूता है, वो ब्रह्म हत्या का है। लेकिन वरदान क्या दिया, तुम्हारी डाली कटेगी तो वापस आ जाएगी। चौथा हिता ऐसा पाप का ब्रह्म हत्या का स्त्री ने मान लिया, मांग लिया मासिक धर्म के रूप में, चौथा ऐसा ब्रह्म हत्या का पाप। और स्त्री को आशीर्वाद इंद्र ने दिया, भोग में तुम्हारी कभी, भोग से तुम्हारा कब मन भरेगा ही नहीं। अब तुष्टा ने कहा, मेरे बेटे को ले गए थे पुरोहित बनाकर और गला काट दिया। तुष्टा ने यज्ञ किया, स्वाहा स्वाहा, इंद्र का शत्रु पैदा हो, इंद्र को मारने वाला पैदा हो। ब्राह्मण से मंत्र उच्चारण में गलती हो गई और पैदा हुआ इंद्र का, इंद्र जिसका शत्रु हो, और उस यज्ञ के अंदर से एक बहुत बड़ा सब दिशाओं को ढकने वाला पुरुष पैदा हुआ, उसका नाम है वृत्तासुर। वृत्तासुर प्रकट हुआ त्विष्टा के यज्ञ से और वृत्तासुर ने सेना कठी की सब असुरों की और इंद्र के ऊपर आक्रमण किया और इंद्र के साथ महायुद्ध हो रहा। अब इंद्र भयभीत होकर भगवान के पास चला गया कि वृत्तासुर से कैसे बचना है। बोला, दधीचि ऋषि के पास चले जाओ, उसके हड्डियां मांग लो और उन हड्डियों से वज्र बनाओ और वज्र से तुम वृत्तासुर का वध कर सकते हो। इंद्र ने जाके दधीचि ऋषि को प्रार्थना की। दधीचि ने कहा, कोई अपनी हड्डियां देगा तो मैं मरूंगा, तब हड्डियां दूंगा ना। बोला, आप साधु संत परोपकारी है, जीवन से आपको कोई मोह नहीं है, तो यहां इंद्र को इस, यहां हमको लगता है कि आजकल कहते हैं ना, कोई गुर्दा दे दे, कोई आंख दे दे, किसी को अपना दान कर दे, तो इंद्र को दधीचि ने अपनी हड्डियां दान कर दी। उन्होंने हड्डियों से वज्र बनाया, इंद्र ने वज्र हाथ में लेके युद्ध भूमि में खड़ा है, सामने वृत्तासुर खड़ा है, और वृत्तासुर के इंद्र के भय से भाग रहे हैं जो असुर, उनको वृत्तासुर कहता है भागो मत, अगर माता के पुत्र हो तो सीने के ऊपर अस्त्र शस्त्र सो, और मल मूत्र हो माता पिता के तो भाग रहे हो, और देवताओं को कह रहा है जो पीठ लेके भागता है उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र क्यों चला रहे हो, वीर हो तो मेरे से लड़ो, युद्ध करो। अब वृत्तासुर इंद्र के सामने खड़ा है, उसको भगवान सामने दिखाई दिया और चार श्लोक वृत्तासुर की चतुर्श्लोकी के भक्ति का सार है, वो चार श्लोकों का हम पाठ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब युद्ध भूमि में खड़ा है वृत्तासुर, इंद्र सामने खड़ा है, वज्र हाथ में है। वृत्तासुर कहता है, इंद्र तुम्हारे को भगवान ने वज्र दिया है, भगवान का वज्र कभी निष्फल नहीं होगा, चलाओ ना, मारो ना। हमारे गुरुदेव वृत्तासुर कहता है, हमारे गुरुदेव संकर्षण भगवान नीलांबर बलराम जी ने हमको कहा है कि भक्तों को भोग नहीं देना, भक्तों को भक्ति मिलेगी तो भोग की कोई जरूरत नहीं है। और ये करते हुए उनको भगवान नाज याद आया। पहला वृत्तासुर श्लोक ही पढ़ रहे, अहम हरे रतव पादे कमूला दासानुदास भवित सामी भूय। भगवान फिर कब मैं आपके दासों का दास बनूंगा, भगवान फिर मैं कब आपके दासों का दास बनूंगा, ये है हमारी पहचान। गोपी भरत हो पद कमल योर दास 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 अनुदास, मैं आपके भक्तों का, अरे भाई दास बन के क्या करोगे, तो कहते हैं मन स्मरता सो पतेर गुणांस्ते, मन से आपके गुणों का स्मरण करूंगा और गणित वाका और वाणी से आपका गुणगान करूंगा और कर्म करो तुकाया और शरीर से आपकी सेवा करूंगा। इसको कहते हैं भक्ति, शरीर से सेवा करूंगा, मन से आपके गुणगान करूं चिंतन करूंगा और वाणी से आपका गुणगान करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा, मैं आपका दासों का दास कब बनूंगा, यह है भक्त का धर्म। भक्त का धर्म है दास दास अनुदास, और मन कर्म और वचन से, काया से, वाणी से और मन से, शरीर मन और वाणी से भगवान की सेवा करें। अब भक्त का अर्थ क्या है? भगवान कहते सेवा क्यों करेंगे, तुम्हें क्या चाहिए? भाई लोग सेवा करते हैं कुछ मांगने के लिए, तुम्हें क्या चाहिए? अब वृत्तासुर कह रहा है, ननाक प्रष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे न पुनर्भवाम वा सम्मंजसतवा व्रही कांक्षे। मुझे इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे धरती के ऊपर साम्राज्य का राज नहीं चाहिए, मुझे रसाधिपति नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आपकी भक्ति नहीं करूंगा कि मेरे को संसार की कोई चीज मिले। मेरा एक ही है, न मुझे योग की सिद्धि न चाहिए। क्या चाहिए? सामंजस्य तव व्रहे यकांक्षे, मैं तो केवल आपसे प्रेम करना चाहता, आपको छोड़ के और कुछ भी नहीं चाहिए। यह है भक्त का अर्थ, भगवान की सेवा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। चाहे उसको स्वर्ग का पद मिले या ब्रह्मा का पद मिले या ध्रुव का पद मिले या संसार का साम्राज्य मिले, कुछ नहीं चाहिए। भगवान आपके चरणों का शरण चाहिए, आपसे जुदा होकर और कुछ नहीं चाहिए। और भक्त का काम क्या है, भक्त की इच्छा क्या है? तीसरे श्लोक में कहते हैं, अजात पक्षा इव मात्रम खगाः स्तनन्यम यथावत् सराः क्षुधार्ता। जैसे पक्षी छोटा है जिसके पर नहीं निकले हैं, बेचारा इंतजार करता है मेरी माँ आएगी, दाना लाएगी, मेरे को खिलाएगी, कहीं से पत्ते हिलते हैं तो माँ का इंतजार करता है। ऐसे भगवान, मैं बैठा आपके नाम का स्मरण करूं और आप ही जब चाहें तो मुझे खिलाएं, जब चाहें तो पिलाएं। फिर विचार आया कि जब पर निकल आएंगे तो पक्षी मां का इंतजार तो नहीं करेगा। तो दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे छोटा नवजात बछड़ा खूंटे में घर में बंधा है, गाय चरने गई है, बछड़ा इंतजार कर रहा है मेरी माँ आएगी मुझे दूध पिलाएगी। तो माँ आती है, बछड़े को चाटती है, लेकिन बछड़ा अपने आप दूध पीता है। इसका मतलब भगवान, मैं आपकी प्रतीक्षा करूं, मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपके कथा अमृत को पीऊं और ऐसे मेरे मन आपके इंतजार में लगा रहे। फिर बड़ा 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 बच्चा बछड़ा बड़ा होके घास खाने शुरू कर देगा तो फिर मां की जरूरत तो नहीं है। तब तीसरा उदाहरण देते हैं, प्रियम प्रियये वव्यस्तिम विष्णुना मनो अरविंदाक्ष ददृक्षते त्वाम। हे कमल नैन, जिस पतिव्रता पत्नी का पति परदेश चला गया हो, जो एक एक दिन करके गिन रही है कब वापस आएगा, और जब पति आता है तो उसकी प्रेम से सेवा करती है, उसके आने से उसका प्रेम और बढ़ता है, ऐसे हे नाथ, हे कमल नैन, मैं आपकी प्रतीक्षा करूं, जब आप मिलें तो मैं आपकी सेवा करूं। यह सबसे उत्तम उदाहरण है कि भगवान के हम प्रेमी बन जाएं। अब अंतिम मोक्ष क्या है भक्त का, उसकी बात करते हैं। भक्त को मोक्ष नहीं चाहिए, ये वृत्तासुर चतुर्श्लोकी का चौथा श्लोक है, 11वें अध्याय का, ये छठे स्कंद के 11वें अध्याय का 24, 25, 26 और 27 श्लोक है। इसको वृत्तासुर चतुर्श्लोकी कहा जाता है। मम उत्तम श्लोक जनेशु सख्यम। क्या चाहिए आपको? बोला भगवान, आपके भक्तों के साथ मित्रता हो, जहां रहूं आपके भक्तों के संग में रहूं। संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, हो सकता है मेरे कर्मों के कारण मेरे को कहीं जन्म लेना पड़े, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन जहां भी जन्म हो आपके भक्तों से मैत्री हो, उनमें आसक्ति हो। तो हम मायात्म जादार ग्रहेशु, अरे आपकी माया से भगवान फिर मेरे को घर गृहस्थी में मत फंसाना। मेरा मोह ममता पुत्र घर परिजन माया धन में न हो। आसक्त चित्त सननाथ भूयात। कई जन्मों में मैंने घर परिवार की नौकरी की है, लेकिन अब अगर कहीं जन्म मिले तो आपके भक्तों की मैत्री हो, उसमें आसक्ति हो, उसमें भले मेरा मोह हो, बाकी घर परिवार में मोह न हो। और ये कहने के बाद इंद्र ने कहा कि ऐसी बड़ी भक्ति वृत्तासुर के अंदर है, इसको कैसे मारूं। तो वृत्तासुर ने ही अपना त्रिशूल फेंका, इंद्र ने त्रिशूल फेंका, इंद्र को त्रिशूल, इंद्र का हाथ ही नीचे गिरा ऐरावत, और इंद्र नीचे गिरा, हाथ से वज्र गिर गया, हाहाकार मच गया। लेकिन वृत्तासुर ने कहा नहीं, पहला अपना वज्र उठाओ, विष्णु ने दिया हुआ है, डरो मत, उठो। अब इंद्र ने पहली बार एक हाथ वज्र से काटा वृत्तासुर का, दूसरा हाथ काटा, वृत्तासुर फिर भी आगे बढ़ा, मुंह खोल के इंद्र को निगल गया, इंद्र वृत्तासुर के पेट में चला गया, चारों ओर से हाहाकार मच गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा। वृत्तासुर समाधि में बैठ गया कि अब मेरा काम पूरा हो गया। और इंद्र ने नारायण कवच पहना हुआ था, मरा नहीं, हाथ में वज्र था, और वज्र से पेट काट के वृत्तासुर का बाहर निकला इंद्र। और फिर वज्र 100 दांतों से 1 साल तक उसका गर्दन काट सका। तब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि वृत्तासुर कौन था जिसके हृदय में इतनी बड़ी भक्ति भरी हुई थी। तो सुखदेव महाराज कहते हैं ये एक बहुत बड़े राजा चित्रकेतु नाम के थे, जिसको बहुत सी रानियां थी, कोई संतान नहीं था। एक दिन अंगीरा ऋषि उनके घर में आया। ऋषि आया तो भगवान की कथा सुनाने था, लेकिन उसने कहा आप महाराज पुत्र दीजिए। ऋषि ने कहा आज पुत्र दूंगा तो विश्वास बढ़ेगा, कल भगवान की भक्ति भी करेगा। तो उसको कहा कि तुम्हारा पुत्र तो होगा लेकिन हर्ष और शोक, तुम्हें खुशी भी देगा और दुख भी देगा। उसने बोला दुख ये होगा, बड़ा हो गया आ गया नहीं मानेगा, कोई बात नहीं, पुत्र हो तो सही, वो समझा नहीं। अंगीरा ऋषि चले गए, एक रानी ने पुत्र को जन्म दिया। महाराज प्रसन्न हो गया, राजमहल में आनंद मंगल हो गया, बहुत बड़ा दान पुण्य होने लगा, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लगे, बच्चा बड़ा हुआ, वो रानी महारानी हो गई, पुत्र का जिसने जन्म दिया वो राजा को प्रिय हो गई। दूसरी रानियां कहती है अब हम तो दासी के बराबर भी नहीं रह गई। उनके हृदय में ईर्ष्या ऐसी हुई, उन्होंने ईर्ष्या की जलन में उस छोटे बच्चे को विष दे दिया, बच्चा मर गया। मां कहती है अभी तक बच्चा क्यों नहीं उठा, दासी जाओ देखो, हाहाकार मच गया, बच्चा मर गया, राजा हाहाकार करके रो रहा है। तब फिर अंगीरा नारद के साथ आया, दोनों ब्राह्मण के रूप में आए, ना दोनों आए, उन्होंने कहा महाराज आप रो रहे हो। बोला मेरा बच्चा मर गया। नारद ने कहा मैं इसको अभी बुला देता हूं। वो बच्चा जीवित हो गया, बैठ गया और कहता है चित्रकेतु मेरे बेटे तुम कहां गए थे। बोला किसका बेटा, कौन सा बेटा, कितनी बार मैं तेरा बाप बना, कई जन्मों में हम भटके हैं, अब मेरा इतने ही दिन यहां आना था, अब मैं वापस जा रहा हूं। नारद के बुलाने के ऊपर बच्चे की आत्मा वापस आई, बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर चली गई। अब पूछता है चित्रकेतु कि आप कौन हो। बोला मैं नारद हूं, ये अंगीरा है, इसी ने आपको पुत्र दिया था। अब उपदेश जो उनको दिया, ये बात हम जब करते हैं, देखो ये संसार में जो रिश्ते नाते हैं कर्मों के कारण से होते हैं, समय तक रहते हैं, उसके बाद सब छूट जाते हैं। ये 10 का नोट या 20 का नोट एक पड़ा है, एक 2 बजे इस 20 के नोट को माता जी समझती थी मेरा है, फिर यहां रखा तो मैं समझता हूं मेरा है, और मैं यहां से उठ के जाऊंगा बाहर जाके किसी से कुछ केला खरीदूंगा तो केले वाला समझा वाला मेरा है, लेकिन ये नोट कितने जेब बदल चुका है, किसने किसने इसको अपना माना है, लेकिन इसके ऊपर क्या लिखा है, किसी का नहीं है, ये किसका है, भारतीय रिजर्व बैंक का है। ऐसे हम समझते हैं कि ये पुत्र मेरा है, ये मित्र मेरा है, ये पति मेरा है, लेकिन सब है भगवान के अंश, उनके ऊपर लिखा है तुम्हारा नहीं है, जितने दिन तुम्हारे पास है उतने दिन रहेगा, और जब दूसरे का होगा तो दूसरा उसको अपना समझेगा। अब चित्रकेतु को नारद ने उपदेश दिया, संकर्षण का मंत्र दिया, 12 दिन में वो विद्याधर बन गया, मानव से ऊपर पद के ऊपर चला गया, विद्याधरों के साथ विमान में बैठ के कैलाश के ऊपर घूमते हुए शंकर जी को देखा, पार्वती गोद में बैठी थी, और शंकर सनक आदि ऋषियों को उपदेश दे रहे थे। चित्रकेतु हंसा, बड़ा महात्मा है, पत्नी गोद में बैठी है, अरे देवताओं का नेम अलग है, इंसान का नेम अलग है, कुत्ते का नेम अलग है, कुत्ता कुत्ती शहर के बीच में खड़े होते हैं तो उनको कोई परवाह थोड़ी है कि मैं कुत्ता हूं कुत्ती हूं क्या कर रहा हूं, उनका नेम मानव जैसा तो नहीं है, मानव का नेम अलग है, देवता का नेम अलग है। पार्वती को क्रोध आया कि शंकर जी के ऊपर हाथ उठा हो, और ये निंदा करने वाला कौन है, जा असुर बन जा। पार्वती ने श्राप दिया चित्रकेतु को, वो वृत्तासुर बना। इसलिए उसकी भक्ति पहले पूरी थी, बस थोड़ी सी अहंकार के कारण बच गई थी। अब चित्रकेतु नीचे उतर के मारा, माँ पार्वती को प्रणाम किया कि माता मेरे को क्षमा करना, मुझसे अपराध हो गया, आपको मैंने बड़ा दुख दिया, मेरे को असुर बनने में कोई कठिनाई नहीं है, मैं असुर बनने को तैयार हूँ, आपको दुख दिया इसलिए मुझे क्षमा करना। और चित्रकेतु वहां से चला। शंकर कहता है देखो पार्वती कितना बड़ा भक्त है, तुम्हारे को श्राप नहीं दिया, दे सकता था। तो भगवान के भक्त सहनशील होते हैं। यहाँ चित्रकेतु की कथा पूरी होती है। अब पोषण में दिति की पूजा की कथा है। अब वृत्तासुर मर गया, इंद्र ने उसको मार दिया, तो दिति ने कहा कि इंद्र को मारने के लिए कश्यप उनका पति है, दिति का पति कश्यप एक दिन बाहर कहीं गया था प्रचार पे या सत्संग पे, वापस लौट के आया, दिति ने बड़ी सेवा की, इतनी ज्यादा सेवा की कि कश्यप ने कहा क्या चाहिए, बोला वरदान दो, मेरे को ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारे। कश्यप बोलता है इंद्र भी मेरा बेटा, वो आदिति का बेटा है, वो भी मेरा बेटा, और एक तेरे को पुत्र दूं मेरे बेटे को मारे, मैं तो बड़ा इस स्त्री के मोह में फंस गया और वचन दे के बैठ गया, लेकिन अब बात कह दी है तो सत्य करनी है। बोला भगवान की उपासना 1 साल तक करो, उसके बीच में कहीं भी कोई गलती मत करना, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। दिति भगवान की उपासना करने लगी, पूजा पाठ करे, स्नान करे। इंद्र ने कहा मेरे को मारने के लिए माता तपस्या मेरी मासी कर रही। दिति आदिति दोनों बहनें हैं और दोनों कश्यप की पत्नियां हैं, एक के बेटे असुर है, एक के बेटे देवता है, और दोनों लड़ते रहते हैं। इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके दिति की सेवा में आ गया, दिति को भोजन दे, दिति के लिए लकड़ी लाए, दिति के लिए फूल लाए, लेकिन इंतजार ये कर रहा है कब कोई गलती करती है तो मैं इसके पूजा को मैं विघन डालू। एक दिन दिति ने भोजन किया, मुंह नहीं धोया, हाथ नहीं धोया, थकी हुई थी और सो गई। इंद्र उसके गर्भ में चला गया, वज्र से गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए, उन्होंने कहा मारो मत मारो मत, और 7 के 49 कर दिए, मरे नहीं। इंद्र बाहर निकल के अपने रूप में आके कहता है दिति को माता मैं इंद्र था, मैं आपके पुत्रों को मार रहा था लेकिन मर नहीं रहे थे क्योंकि आपकी भक्ति से प्रकट हुए, अब इनको असुर मत बनाओ, ये मेरे को दे दो, मैं इनको देवता बनाता हूं। आज भगवान की भक्ति से होने वाले 49 मारुत देवता बने, और इंद्र उनको लेके गया, दिति के पुत्र दैत्य न बने देवता बन गए। परीक्षित ने कहा वज्र से कैसे नहीं मरे। सुखदेव महाराज हंसते हुए कहते हैं तुम ब्रह्मास्त्र से नहीं मरे, जिसने तुम्हारी रक्षा की वो क्या उनकी रक्षा नहीं कर सकता, भगवान ने उनकी रक्षा की। यहाँ 6 स्कंद पूर्ण आवती पे पहुंचता है। 7 स्कंद का आरंभ ऐसे होता है, परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान पक्षपात करता है, वृत्तासुर को मरवा दिया, इंद्र को राज दिला दिया, तो भगवान पक्षपात करता है क्या, देवताओं की सहायता करता है, असुरों को मारता है। अब जब ये कहा तो सुखदेव महाराज कहते हैं भगवान किसी से पक्षपात नहीं करता है, जिसका जैसा भाव वैसे भगवान उससे बर्ताव करता है। जैसे ये बिजली है, तार के अंदर से बिजली आती है, इस माइक्रोफोन में आवाज को बढ़ा रही है, लाइट में रोशनी दे रही है, पंखे में हवा दे रही है, हीटर में गर्मी दे रही है, तो इसमें बिजली का दोष है क्या, यंत्र का अंतर है, जैसा आपकी मशीन है वैसा उससे व्यवहार कर रही है। पानी एक ही खेत में देते हैं, आम को रसीला मीठा करता है, नींबू को खट्टा करता है, करेले को कारा करता है, कड़वा करता है, क्या पानी का दोष है क्या, बीज का दोष है। ऐसे जब सतोगुण प्रधान कोई होता है तो देवताओं की भगवान सहायता करते हैं, रजोगुण प्रधान होते हैं तो दैत्यों की सहायता करते हैं, तमोगुण प्रधान होता है तो असुरों की भी सहायता करते हैं भगवान, राक्षसों की भी सहायता करते हैं, हैं तो भगवान के। और फिर उन्होंने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, सातवें स्कंद में केवल 15 अध्याय हैं, इस स्कंद की कथा नारद जी कह रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज सुन रहा है, हस्तिनापुर के महल में ये कथा हो रही। तो सुखदेव महाराज कहते हैं मैं आपको इसका उत्तर जो आपके पितामह युधिष्ठिर महाराज ने नारद से पूछा था वही प्रसंग सुनाता हूं। बोला क्या प्रसंग है? बोला राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में जब भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा का प्रस्ताव रखा गया तब शिशुपाल उठ के खड़े हो गए चेदी नरेश, कहा इसके अलावा आपको कोई अगर पूजा के योग्य व्यक्ति नहीं दिखाई दिया? भीष्म पितामह आप बड़े नहीं हो, व्यासदेव बड़ा नहीं है, इस ग्वाले को, इस माखन चोर को, इस गोपियों के छेड़ने वाले को अगर पूजा करनी चाहिए? गालियां देने लगा और भगवान मुस्कुरा रहे थे। भीमसेन गदा उठाई, भगवान का नहीं रुको, भगवान गिन रहे थे 1, 2, 3, 4, जब 99 पूरी हुई सोई गाल निकाली, भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, शिशुपाल का गर्दन कटा, शिशुपाल के शरीर से आत्मा निकली और भगवान के चरणों में प्रवेश किया। उस वक्त युधिष्ठिर महाराज ने कहा हाय हाय, इतना बड़ा द्वेषी, इतना बड़ा दुष्ट भगवान, इसको जो योगियों को गति मिलती है वो इसको गति कैसे मिल गई? तो क्या भगवान ने उससे द्वेष किया? नहीं, मारने के बाद उसको भी मुक्त कर दिया, अपने चरणों में स्थान दे दिया, तो भगवान क्या द्वेष करते हैं? सातवें स्कंद में तो सीधी बात है कि आप कहते हो भगवान असुरों से द्वेष करते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं, अरे सातवें स्कंद में तो दैत राज हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद के पक्ष में भगवान साक्षात नरसिंह देव के अवतार में आ गए, तो पक्ष कहां करते हैं? जहां भक्ति होती है वहां प्रकट होते हैं। तो कथा क्या है कि शिशुपाल, और उस वक्त कहते हैं भगवान के जल्दी सुदर्शन चक्र बुलाने के ऊपर उंगली पे खराश आ गई, उस वक्त द्रौपदी नौलखी साड़ी पहन के और अभिवर्त स्नान के लिए बैठी थी, द्रुत ने तत्काल अपनी नई साड़ी का टुकड़ा भगवान की उंगली के ऊपर ला, भगवान मुस्कुराए कि इसका ऋण कैसे मैं उतारूंगा, द्रौपदी जब तुम्हें जरूरत होगी तब अखुट साड़ी दे दूंगा इस टुकड़े के बदले में। थोड़ा भी कोई भगवान की सेवा करता है भगवान कभी भूलते नहीं है। और फिर शिशुपाल की कथा बताते हुए नारद कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने 4 कुमार पुत्रों को कहा था कि तुम थोड़ा आगे वैकुंठ में जाना, भगवान वैकुंठ नाग का दर्शन कर लेना। वो वैकुंठ के 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पे गए तो 2 खड़े थे जय और विजय भगवान के द्वार पार। इन 4 छोटे बच्चों को देखा, कहा तुम नंगे पतंगे कहां वैकुंठ में जाते हो, तुम जाने के अधिकारी नहीं हो। ये 4 कुमारों को क्रोध आया, सबसे पहले ब्रह्मा के पुत्र सबसे बड़े हैं, कहा तुम तो वैकुंठ के दरबार में रहने के योग्य नहीं हो, जाओ असुर बन जाओ। भगवान नारायण भागते हुए गरुड़ को भी नहीं पूछा, चप्पल भी नहीं पूछे, गरुड़ को झटक दिया और विश्वकर्ण चप्पल लाए, उसको खड़ाऊ को छोड़ दिया, लक्ष्मी को छोड़ दिया, भागते हुए गेट पे आए, कहा ब्राह्मणों आपके स्वागत करने में आने में मुझे देर हो गई, ये मेरे दरबारों ने आपको आपका अपमान किया, अच्छा किया आपने इनको शराब दिया, मैं इनको वापस लेने के जाऊं लिए जाऊंगा, ये 3 बार असुर बनेंगे कोई बात नहीं। अब वो छोटे से बालक भगवान के चरणों में लगी हुई तुलसी और चंदन के सुगंध को सूंघते हैं, उनका हृदय बदल जाता है, उनके ज्ञान के अमृत से अब भगवान के प्रेम का अमृत ज्यादा बढ़ जाता है। वे कहते भगवान हमने इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको क्षमा कर दो। बोला ब्राह्मणों अगर मेरा हाथ ब्राह्मण का हाथ अपराध करे तो मैं अपना हाथ काट दूंगा, इतना मुझे ब्राह्मण प्रिय है। वो दोनों जय और विजय पहले हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिप बने, दोबारा वो जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने, तब भगवान रामचंद्र ने उनका उद्धार किया, और वो ही दोनों तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंडवकर बने। तो ये भगवान के अपने पार्षद थे, भगवान की लीला के लिए इस धरती के ऊपर आए थे, तो ये कथा होती है कि हिरण्याकश्यपु और हिरण्यकश्यप का जन्म कैसे हुआ। अब हिरण्याकश्यप को तो हमने आपको कल बताया था, किसने मारा? वारादेव ने। अब हिरण्याकश्यप को अपनी माता दिति और अपनी भाभी और बेटों को प्रवचन दे रहा है, संसार में कुछ सदा रहने वाला नहीं है, पानी में हवा के लहर से कचरा एक कोने में इकट्ठा होता है और फिर दूसरी हवा की लहर आती है, सब बिखर जाता है। ऐसे समाज में संतान इकट्ठा होता है, परिवार इकट्ठा होता है, मौत की आंधी आती है, सब बिखर जाते हैं, ऐसा उपदेश दे रहा है वेदांत का। लेकिन उपदेश देने के बाद फिर कहता है मैं अमर होने के लिए जा रहा हूं और जाके तपस्या करने लगा। ऐसी तपस्या करने लगा, हाथ ऊपर करके सारा शरीर मिट्टी हो गया, इसके ऊपर जाले बन गए और आकाश में इतनी गर्मी हुई कि देवलोक तपने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा को कहा क्या करें, ब्रह्मा ने शंकर भगवान को कहा क्या करना है, लेकिन ब्रह्मा जी नीचे उतर के आए, कहा कश्यप के पुत्र बड़ी तपस्या कर रहे हो, क्या चाहिए? करमंडल में गंगा जल है वो छड़का। कहता है मुझे अमर बना दो। बोला अमर तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी नहीं हूं, 100 साल के बाद मेरे को भी ये पद छोड़ना पड़ेगा। तो कहा फिर आपके पैदा हुए किसी जीव से मैं ना मरूं, ना असुर से मरूं, ना दैत्य से मरूं, देवता से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना आकाश में मरूं, ना धरती पे ऊपर मरूं। ऐसे जितने मरने के भय थे वो सब वो ब्रह्मा जी से साइन करा लिया कि नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उपदेश दे रहा है कि सब मरने वाले और खुद कहता है मैं अमर बनता हूं, इसको बोलते हैं असुर। इसकी पत्नी का नाम कयादु था, इसका सब अब गर्भवती थी। जब ये तपस्या कर रहा था इंद्र उसका अपहरण कर ले जा लेके जा रहा था। नारद ने कहा एक नारी और वो भी गर्भवती, उसका अपहरण करने का अपराध कर रहे हो देवराज? बोला महाराज ये हिरण्याकश्यप की पत्नी है, इसके पेट में सांप का बेटा सपोला बड़ी खतरनाक होगा। नारद ने कहा तुम्हें क्या पता, कोई भगवान का भक्त भी हो सकता है, इसको छोड़ो मेरे आश्रम में छोड़ जाओ। कयादु नारद के आश्रम में रही, नारद रोज भक्ति का उपदेश देता था और ये छोटा बालक भविष्य का प्रहलाद मां के गर्भ में उपदेश को सुनता था। भारत के इतिहास में अर्जुन का बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना माता सुभद्रा के गर्भ में सीखा था और प्रहलाद महाराज कयादु के गर्भ में नारद के भक्ति के उपदेश को सुना था। संदेश है भारतवर्ष की नव युवतियां जब गर्भवती हों तो गीता भागवत का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, भक्तों का पाठ करें तो बच्चे के संस्कार अच्छे होंगे। बाकी टीवी के ऊपर बैठ के कार्टून देखेंगी तो कार्टून पैदा होंगे, उनसे हम परेशान, आप परेशान, दुनिया परेशान हो जाएगी। हरी कथा सुननी चाहिए, हरी कथा करनी चाहिए। तो अब कयादु को नारद जी के आश्रम में रहने दीजिए और वहां तपस्या कर रहा है हिरण्याकश्यप को करने दीजिए। कल भगवान नरसिंह का प्रकट्य होगा, वामन देव का प्रकट्य होगा, रामचंद्र का प्रकट्य होगा और कृष्ण का प्रकट होगा। ये चार चार अवतार कल होने वाले हैं, तो कल की कथा में ये सब करेंगे। अब 5 बज रहे हैं, यहाँ वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।